بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل جو کچھ ہم نے سیکھا تھا مکتبہ شاملہ کے حوالے سے آج ہم پھر وہیں سے بات شروع کریں گے. اس سے پہلے یہ ضروری ہے کہ کچھ چیزوں کو ہم ریویو کر لیں. یہ مین جو بیک گراؤنڈ پکچر ہے مکتبہ شاملہ کی, میں نے عرض کیا تھا, اس پر اگر ہم کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کتابوں کا فولڈر کھل جاتا ہے نارمل کلک پہ, ٹھیک ہے. اور اسی طرح یہ رائٹ پہ جو سب سے پہلا آئیکن ہے اس کو بھی کلک کرتے ہیں تو یہی کتابوں کا فولڈر ہمارے سامنے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کتب البرنامج یعنی سارے پروگرام کی کتابیں یہاں فولڈرز کی صورت میں موجود ہیں, اور ہم چاہیں تو ایک ایک فولڈر کو کھول کر اپنی مطلوبہ کتاب کو تلاش کر لیں اس طرح, ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ظاہر وقت لگتا ہے, ہم نیچے کتاب کا نام لکھ کر بھی پورے شاملہ کی ان تمام فولڈرز میں عربی سے متعلق, اشعار سے متعلق, قرآن سے متعلق, علوم قرآن, تفسیر, حدیث, تاریخ, سیرت, جو کچھ بھی کتاب ہے جس موضوع سے بھی ہے نیچے نام لکھ کر تلاش کر لیتے ہیں. اور انہی فولڈرز کو اگر ہم نے تلاش کرنا ہے, کہ فولڈر مجھے تلاش کرنے کے بجائے اوپر سے ڈائریکٹ لکھ کر آپ کلک کریں, آپ انٹر کریں. جیسے آپ نے التفاسیر لکھا, یہ دیکھیں اوپر لکھا ہوا ہے, میں انٹر کر رہا ہوں تو دیکھیں تفاسیر کا فولڈر آپ سے آپ سلیکٹڈ ہے, ہائی لائٹڈ ہے. تو اوپر ہم فولڈر تلاش کرتے ہیں, نیچے سے ہم یہاں کتاب تلاش کرتے ہیں. کسی کتاب پر کلک کیا ہوا ہے تو یہاں اس باکس میں اس کتاب کی کچھ معلومات ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. اور جب بھی نیچے کوئی کتاب کا یا اوپر لکھیں گے فولڈر کا تو یہاں اس سے تنفیذ البحث کے اس بٹن سے ہم اس کو کتاب کو تلاش کرتے ہیں. یہ جو باکس ہے جس میں کتاب کی تفصیلات آ رہی ہیں, اس پر میں نے عرض کیا تھا کہ اس کو ہم چھپا بھی سکتے ہیں. اس کے لیے یہ ایک دوسرا آئیکن ہے, اس کو کلک کریں تو یہ چھپ جائے گا. اور پھر اسی کتاب سے متعلق اگر زیادہ معلومات درکار ہیں تو یہ بطاقت الکتاب ہے, ہم نے جس کتاب کو سلیکٹ کیا ہے اسی کے لیے یہاں کلک کریں گے تو یہ بطاقہ کھلے گا. اس میں کتاب کے بارے میں اگر کچھ معلومات ہیں وہ یہاں ہوں گی, مؤلف کے بارے میں تو یہاں ہوں گی, ٹھیک ہے. اچھا جی, بہت سے فولڈر ہم کھول لیتے ہیں, اس کو ہم دوبارہ بند کرنا چاہیں تو یہاں سے اس بٹن کو پریس کر کے ہم تمام فولڈرز کو اپنی اصل حالت پر واپس لے جا سکتے ہیں. یہ بات تھی. اس کے بعد ہے جناب تصفیہ. یہ میں نے عرض کیا تھا کہ اس والے میں آپ کو متعین طور پر الفابیٹیکل آرڈر میں اور ارینجمنٹ میں کتابیں دکھائی جاتی ہیں. جیسے خا پر کلک کریں گے تو تمام کتابیں جو خا کے جن کا نام حرف خا سے شروع ہو رہا ہے وہ سب کے سب کتابیں آ جائیں گی. را پہ کلک کریں گے تو وہ آ جائیں گی. الف پہ کریں گے تو الف سے متعلق, الف سے شروع ہونے والی جتنی بھی کتابیں ہیں ان کے ٹائٹلز الف سے شروع ہو رہے ہیں وہ یہاں آ جائیں گے. اور ساتھ ہی تعداد بھی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ الف سے شروع ہونے والے جتنے بھی نام ہیں کتابوں کے شامل ہیں اس ورژن میں وہ 958 ہیں, ٹھیک ہے جی. اچھا, نیچے اگر ہم لکھیں گے تو اس میں ذرا بہتر ہے جی. یہ تصفیہ کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں متعین, واضح اور بالکل فلٹر کر کے بتا دیتا ہے کہ آپ کو جو کتاب یا جو نام مطلوب ہے وہ نام 2, 4, 5 کتنی کتابوں میں ہے. مثال کے طور پر آپ کے سامنے میں یہاں لکھ رہا ہوں, اگر ہم لکھتے ہیں جی صحیح البخاری, نیچے میں نے لکھا ہے صحیح البخاری, تو اب آپ دیکھیں کہ جس جس کتاب میں چاہے وہ شرح ہی کیوں نہ ہو صحیح البخاری لکھا ہے تو وہ ساری کی ساری کل کتابیں آپ کے سامنے آ گئی. اب میں لکھتا ہوں جی شرح صحیح البخاری, اس کو میں نے تبدیل کر دیا ہے, تو آپ دیکھیں جیسے میں نے اس کو تبدیل کیا ہے تو صرف یہ سامنے آ گیا. مجموعات میں اگر آپ جا کر لکھیں گے شرح صحیح البخاری تو دیکھیں تلاش کرتے چلے جائیں, وہ پورے شاملہ میں سے تلاش کر کر کے ایک ایک کلک کرتے چلے جائیں, جہاں جہاں یہ الفاظ ہوں گے وہ تلاش کرتا رہے گا, لیکن ایک واضح ویو اسی تصفیہ میں آتا ہے جی, ٹھیک ہے جی. اس کے بعد سابق کے لیے عرض کیا تھا کہ جو کتابیں ہم نے اس سے پہلے استعمال کی ہیں اور کھول چکے ہیں سابق میں وہ کتابیں ہیں, ہمیں جب بھی شاملہ آ کے کھولنا ہے تو جو کتابیں اس وقت ہم مطالعہ کر رہے تھے ان کو بار بار تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہاں آئیں, دیکھیں, آپ کلک کریں اور بس سابق پہ آ جائیں اور وہاں دیکھ لیں جی مسند ابی حنیفہ ہے, جو آپ پڑھ رہے تھے اس کو کلک کریں, ڈبل کلک کریں تو کھل جائے گی. اس پورے باکس میں کسی بھی کتاب پر اگر ہم کلک کریں گے, کسی بھی کتاب پر, یہ دیکھیں کلک کرنے کے بعد ہم نے ये अर्ज किया था कि राइट क्लिक करने पर हम इस किताब का नाम भी कॉपी करके ले जाके पेस्ट कर सकते हैं, और इस फोल्डर का, जिस फोल्डर की ये किताब है, तमाम किताबें इस फोल्डर की, उन सब के टाइटल इस बटन को दबाने के बाद कॉपी हो जाएंगे और जाके हम पेस्ट कर सकते हैं। ये चीज भी मैंने कल अर्ज की थी। इसके साथ इसी किताब का बिताका है, फुल व्यू है, कंट्रोल पैनल है, और यही किताब शामिला की ऑफिशियल वेबसाइट पर जहां मौजूद है उसका लिंक भी मौजूद है यहाँ, ये देखें ये है। और उसके बाद किताब के अंदर कोई चीज तलाश करनी है उसके लिए यहाँ आइकॉन दिया है, और आखिर में इसी किताब को बाहर एक्सपोर्ट करना है, अपने ही कंप्यूटर में आपने शामिला से बाहर ले जाना है, तो उसके लिए ये एक खास बटन है जिस चीज को हम आगे जाकर सीखेंगे। तो ये पहली चीज थी जो कल हमने सीखी। उसके बाद मैं ये अर्ज करूं जो बाकी दूसरी चीजें हमने कल की हैं, उनमें मिसाल के तौर पर हम सहीहुल बुखारी को खोलते हैं। ये मैंने अर्ज किया था कि जो अबवाब की फहरिस्त है दाएं तरफ, इसको बंद करने के लिए है, बंद करें दोबारा खोल लें। जिस किताब के भी अबवाब फहरिस्त आप बंद करना चाहते हैं बंद कर दें। और ये आइकॉन आपको पता है कि ये सिर्फ फुल व्यू के लिए है, यानी जहां भी किताब आपके सामने किसी ऐसे जगह पर है, बिताकतुल किताब पर खड़े हैं, या आपने तखरीज की है और आपके सामने सिर्फ एक स्ट्रिप आ गई है कि भाई ये एक स्ट्रिप है कि ये हदीस फला जगह पर है, तो आप चाहते हैं किताब खोलें, तो इस तरह का आइकॉन हर जगह आपको मिलेगा, तो किताब मुकम्मल तौर पर खुलती है। अब देखें सहीहुल बुखारी हमारे सामने है, और उसके बाद तीसरा आइकन हमने ये समझा था कि अगर हम इसी किताब सहीहुल बुखारी पर या किसी भी किताब पर जो हमने खोली है, किसी भी सफ़े पर है, हम अपना कोई नोट लिखना चाहते हैं अपनी याददाश्त के लिए, आइंदा मुताले के लिए, कोई काम, कोई तहकीकी नोट है, तो ये चौथा जो आइकॉन है इसको क्लिक करें और नीचे तालीक लिखें और अपने नोट लिखें। ये कलर्स किया था, जो नोट लिखते हैं कुछ भी लिखने के बाद हम नीचे से यहाँ इसको सेव कर सकते हैं, और इसी सफ़े पर खड़े रहते हुए अगर हम हज़्फ का बटन दबाएंगे तो ये नोट डिलीट हो जाएगा। इसी किताब के कई सफ़ों पर मुख्तलिफ जगहों पर हमने इसी तरह तालीक अगर लिखी है तो वो तमाम तालीकात और नोट्स मिटाने हैं, तो ये इरेजर का जो आइकॉन है इसको क्लिक करने के बाद वो तमाम के तमाम नोट्स रिमूव हो जाएंगे। इख्फा और तश्कील आप जान चुके हैं, अगर आपने ज़बर, ज़ेर, पेश, एराब सब मिटाने हैं और इबारत को बग़ैर एराब के देखनी है तो इख्फा और तश्कील पर क्लिक करें और वो चले जाएंगे। ठीक है जी, ये नीचे सफ़ा नंबर और जुज नंबर और सफ़ा नंबर, ये वॉल्यूम है और ये पेज नंबर है, और यहाँ मैंने अर्ज किया था कि रावी का, रिवायत का नंबर आता है। ये देखें सही बुखारी का अगर ये 9 है, हदीस नंबर 9 है, तो नीचे आप देखें 9 लिखा हुआ है। अब आप अगर अगली हदीस पर जा रहे हैं, ये ऊपर हदीस नंबर 10 है, तो आपके सामने बॉक्स में हदीस नंबर 10 है। अब आप चाहते हैं कि 200 हदीस नंबर 200 पे जाना है तो इसी में, इसी बार में आ जाएं और 200 जो है वो टाइप करें और इसको क्लिक करें तो हदीस नंबर 200 सही बुखारी की आप वहां पहुंच गए। ये बात वाज़े हो गई है। ये तमाम चीज़ें जो है, ये तमाम इसके वो फीचर्स हैं जो बहुत ही अहम हैं कि आप जिल्द और सफ़ा नंबर लिखकर भी बराह रास्त पहुंच सकते हैं, और रिवायत का नंबर, हदीस नंबर 250 आपने यहाँ लिखा है और इंटर दबाया है तो डायरेक्ट हदीस देखिए 250 पर हम पहुंच चुके हैं। आखिरी चीज जो इस किताब के हवाले से कि ये फुल व्यू चल रहा है, इस किताब का सही बुखारी या कोई भी किताब खोले जो अर्ज कामिल पर है, तो आप देखेंगे दाएं जानेब हमारे सामने ये अबवाब आ रहे हैं सारे। इन अबवाब को, ये हेडिंग्स हैं, ज़ेली उन्वानात भी हैं, इनको बंद करने के लिए बिल्कुल राइट के कॉर्नर पर नीचे आप देखें कि वो जो आइकॉन है इसको क्लिक करेंगे तो ये सारे अबवाब अपनी असल हालत में वापस आ जाएंगे। ये देखें आपके सामने है, ठीक है। अच्छा, इन अबवाब को, जो भी हेडिंग्स इनके अंदर है, सब हेडिंग्स हैं, इनमें से कोई चीज हमने अगर तलाश करनी है, हम पूरी फहरिस्त को नहीं देख सकते, इतना हमारे पास वक्त नहीं, हम चाहते हैं वक्त भी बचाएं और अपने मतलूबा उनवान तक, फहरिस्त तक पहुंचें, किसी भी हेडिंग पर पहुंचना है, तो मसलन मैं नीचे इसी खाने में मैं लिखता हूं जी फराइद लिखने के बाद मैंने क्लिक कर दिया यहां, तो आपके सामने आप अपने सामने देखें किताबुल फराइद आ गया, ठीक है। तो बराए रास अगर आपने किसी भी किताब का इस तरफ फुल व्यू लिया है और सामने दाएं तरफ आपके तमाम अबवाब की फहरिस्त मौजूद है, नीचे जाकर आप लिखते हैं किताबुल तहारा, किताबुल इल्म, किताबुल अदब, या आपके इल्म में कोई भी चीज फिका की किताब है, उसूल फिका की किताब है, आपके सामने सारे अबवाब हैं, तो जो आप लिखेंगे अगर वो वहां मौजूद है उस किताब में, वो उनवान, वो हेडिंग, तो नीचे क्लिक करने के बाद आप यहाँ क्लिक करेंगे बहस में, तो ये आपके सामने आ जाएगा। ये एक और भी आइकॉन है, ये बजाय तो फाइल अटैच होने का है, इसके अंदर होता कुछ नहीं है, ये फीचर वैसे किसी काम का नहीं, इसको वैसे ही मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके सामने ये चीज आएगी, आप कहेंगे कि ये वाजे नहीं हुई, तो ये किसी भी काम की चीज नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर शामिला ने कोई अटैचमेंट या कोई अटैच्ड फाइल इसके साथ रखी हो तो वो आपके सामने आ जाए, बिलुमूम कुछ भी नहीं होता। ये फुल व्यू में आखिरी चीज अब मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ऊपर देखें कि सही उल बुखारी का नाम आ रहा है और जो पीडीएफ का आइकन है वो भी इस बात की अलामत है कि इसको क्लिक करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसका पीडीएफ भी हमें मिल जाएगा। ये फीचर है जो इस वक्त डिसेबल्ड है, ये काम नहीं कर रहा है, यानी लेकर तो जाता है लेकिन वहां इस वक्त मवाद उन्होंने चौथा, चूंकि वर्जन आ चुका है नया, चौथा एडिशन आया शामिला का, इसलिए इस वक्त कुछ चीजें वहां अवेलेबल नहीं है ऑफिशियल वेबसाइट पर। उसके बाद आप आगे देखेंगे अल इसदार के साथ लिखा है 3, इसका मतलब ये है कि ये जो किताब सही बुखारी का एडिशन है ये तीसरे वर्जन से इसमें शामिल कर लिया गया है, यानी बाज जगहों पर आप देखेंगे 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि पहले एडिशन से शामिला के वो किताब डाल दी गई थी। ठीक है जी, यहाँ उनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी है जो आप देख लें। अब हम आगे बढ़ रहे हैं कि ये किताब हमने खोली है और किताब उल फराइज पर हम मौजूद हैं, हमारे सामने ये एक इबारत है जो आ रही है। अब ये जो खाना है, हम आगे बढ़ रहे हैं जी, राइट पे ऊपर देखें इस खाने में क्या चीज है, यानी बाज औकात एक सफा है जो जिसका हम मुताला कर रहे हैं वो बहुत तवील भी हो सकता है, उसके अंदर बहुत तवील तफसीलात, यानी गोया के 10-10 सफ़े इकट्ठे हैं, जैसे ये एक सफ़ा है, इससे भी बहुत तवील सफ़ात भी आपके सामने आ सकते हैं। आपके इल्म में है कि वहाँ कोई अल्फाज है, कोई लफ्ज या अल्फाज का मजमुआ है जो आपको मतलूब है और उस पेज में है और आप चाहते हैं कि तलाश कर लें, तो आप इस खाने में जाकर उसको लिखें। मसलन मिसाल के तौर पर मैं यहाँ मैंने लिखा है वली, इस खाने में लिखने के बाद ये जो आइकॉन है बहस फिशाशतिल हालिया, इसका मतलब यह है जो इस वक्त मौजूदा स्क्रीन है आपकी, जो पेज आपने खोला हुआ है, इसमें आप लफ्ज वली तलाश कर रहे हैं। ठीक है जी, मैंने इसको क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद आप देखें कि ये आपके सामने उसको उन्होंने रेड कर दिया है, शामिला ने उसी वर्ड को रेड कर दिया है। ठीक है, अच्छा, इसी तरह कोई और लफ्ज आपने लिखना है, आपने लिखा जी सदका, इसको इंटर करें या इसको क्लिक करें, तो ये देखें सदका का लफ्ज भी आपके सामने है कि इस पेज पर आपने जो कुछ तलाश करना था ऊपर लिखा और इंटर किया या ये इस पर क्लिक किया। तो ये बार जो है ये इस मकसद के लिए है कि जब भी शामिला में आपने कोई भी किताब खोली है, जो सफा वहां खुला हुआ है वो सफा चाहे जितना भी तवील हो, उसमें आपकी मतलूबा, आपका लफ्ज या आपकी इबारत या आपकी नस अगर तलाश करनी है तो यहाँ आप लिखेंगे और इसको क्लिक करेंगे, उसके बाद इसको बेशक ये रिमूव कर दें। अब इसके बाद अगली चीज है जी, अगला आइकॉन क्या है, उसको क्लिक करें तो आप देखें हमारे सामने आ रहा है बहस फिल किताब हाली, ये एक बॉक्स खुला है, इस मौजूदा किताब में हमने कोई चीज तलाश करनी है। ठीक है, अब ये जो पूरा बॉक्स है, इस पूरे बॉक्स में, वैसे आगे हम इसको सीखेंगे, मुख्तसरन इस वक्त मैं ये अर्ज करूंगा कि ये वैसे तो ये जो वाव का टैब है और औ का टैब है, ठीक है, ये मुरतबा पे चेक लगाना अनचेक करना यहाँ भी मुताबिक है, चेक और अनचेक के ऑप्शन है और कई खाने दिए हैं, इन कई खानों का क्या मतलब हुआ कि एक ही किताब में कई खाने क्यों दिए हैं, मैं एक लफ्ज या एक जुमला या एक हदीस तलाश करना चाहता हूँ, तो ये मैं सारी तफसीलात आगे वाजे कर रहा हूँ अगले इसके बाद वाले आइकन में, वो हूबहू वही है। यहाँ बिल इख्तिसार ये समझ लें कि इस किताब में हमने कोई चीज तलाश करनी है, यानी सही बुखारी जो हमने खोली है, आप देखें, उसके बाद ये आइकॉन क्लिक किया है। बहथ फिल कुरान अल करीम भी लिखा है और बहथ अल किताब अल हाली भी लिखा है। इसको क्लिक किया तो देखें ऊपर खुद ही आ रहा है बहथ फिल किताब अल हाली। अब मैं कहता हूं जी इस किताब में मिसाल के तौर पर मुझे ये चाहिए जी, खातमुन नबीयीन। सही बुखारी में कहीं ये अल्फाज हैं खातमुन नबीयीन। जैसे ही मैंने इसको टाइप किया, यहां मैं क्लिक करूंगा आपके सामने, ये देखें हर जगह पर तलाश का यही एक दूरबीन का आइकॉन है जिसपे हमने क्लिक करना होता है। आप देखें सही बुखारी में जहां है ये लेकर आएगा। अच्छा जी, सबसे पहले जहां आया है आप देखें वो एक हाशिए में आया। मैं किताब के बिल्कुल आगाज में चला जाता हूँ, ये देखें ऊपर एरो कीज हमने कल समझ ली थी, बिल्कुल राइट पे जाऊंगा तो पहले सफे पर चला जाऊंगा सही बुखारी के। मैं चला गया पहले सफे पर हूं, मैंने फिर क्लिक किया खातमुन नबीयीन पहले से टाइप्ड है, मैंने दोबारा क्लिक किया। अब देखें सबसे पहले खातमुन नबीयीन कहाँ है, एक जो है हाशिए में आ गया जी। इसके बाद आप कहते हैं जी मुझे जाहिर है इस किताब में और भी जगहों पर हो सकता है, तो अब इसका शॉर्टकट क्या है, कैसे मैं बाकी जगहों पर खातमुन नबीयीन का लफ्ज इसी किताब में तलाश करूं, तो आप फंक्शन की के साथ F4 दबाएं। अगर F4 डायरेक्ट आपके यहाँ काम करता है तो वैसे आप प्रेस करें, वरना फंक्शन की के साथ है तो F4 पर क्लिक करेंगे तो आप देखें ये क्या होता है। मैं आपके सामने F4 दबा रहा हूं जी, आप देखें सही बुखारी में है, मैंने F4 दबाया, अगला रिजल्ट आ गया कि उस हाशिए के बाद इस जिल्द में और इस सफे पर खातमुन नबीयीन है और ये बाब है जी खातमुन नबीयीन। ठीक है, मैंने दोबारा F4 दबाया है, सेकंड F4 में आप देखें कि हाशिए में फिर खातमुन नबीयीन है, फिर मैंने क्लिक किया है F4 पर, एक रिवायत आ गई उसमें भी खातमुन नबीयीन है। तो F4 का क्या मतलब है कि जैसे ही एक किताब में एक लफ्ज एक मर्तबा तलाश किया, उसके बाद वही लफ्ज उसी किताब में बार बार तलाश करने के लिए आपको इसको दबाने की और फिर यहां जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप ये नीचे लिखा है जी यमकिनु का दख्त जिर F4, यही रिजल्ट आपको नेक्स्ट रिजल्ट अगर दोबारा देखना है इसी किताब में तो आपके लिए ये मुमकिन है, आप F4 दबाएं। ठीक है जी, अच्छा जो कुछ आपने यहां तलाश किया उसको यहां से डिलीट कर सकते हैं, सारी चीजें भी डिलीट हो सकती हैं, ये चीजें आगे हम सीखेंगे। तो ये जो सेकंड आइकॉन था आज का, पहला तो था बार में लिखें और सफे में तलाश करें कि इस सफे पर फला लफ्ज है या नहीं है, दूसरा था इस किताब के अंदर कोई इबारत तलाश करनी है, ये भी हमने सीख लिया है, और साथ ही इस वाले बॉक्स में हम ये भी समझ लें कि ये ऊपर जब बहथ फिल किताब अल हाली लिखा है उसके साथ बहथ फिल कुरान अल करीम भी है, और इसी तरह बहथ फिल फी बयानात अल कुतुब वल मुअल्लिफीन भी है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि अगर आप ऊपर से बहथ फिल कुरान अल करीम कहेंगे पर क्लिक करेंगे और फिर खातमुन नबीयीन लिखा हुआ है, तो आप देखें मैं क्लिक कर रहा हूं, ऊपर से मैंने अपनी जो है ना सेटिंग चेंज कर दी है, मौजूदा किताब सही बुखारी के बजाय मैं कह रहा हूं कुरान मजीद में ये लफ्ज तलाश करें, तो मैंने जैसे ही वहां चेंज किया खातमुन नबीयीन लिखा हुआ है। अब आप मैं सर्च कर रहा हूं, देखें जैसे ही मैंने क्लिक किया है तो कुरान मजीद में सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 में खातमुन नबीयीन हमारे सामने आ गया, कुरान का टेक्स्ट खुल गया हमारे सामने। ठीक है जी, ये विंडो मैं फिर बंद कर रहा हूँ, कल मैंने अर्ज किया था कि गलती से शुरू में हो सकता है कि आप बिल्कुल फर्स्ट राइट के कॉर्नर के क्रॉस को क्लिक करें, उससे शामिला खुद बंद हो जाएगा, सेकेंड वाले को हमेशा आपने क्लिक करना है, जब भी मौजूदा विंडो आपने बंद करनी है। इस वक्त क्यों बंद करनी है, कुरान मजीद खोल लिया गया है, अब हम वापस वहीं जाना चाहते हैं, तो इसको क्लिक किया वापस आ गया मैं सही बुखारी पर। आपको ये बात समझा दी गई है कि ऊपर बहस फिल किताब अल हाली या बहस फिल कुरान अल करीम ये सब कुछ हो सकता है, और इसी सही बुखारी पर खड़े रहते हुए आप देखें बहस फी बयानात अल कुतुब वल मुअल्लिफीन भी है, आप मुअल्लिफीन के बारे में और शामिला के अंदर जितनी किताबें हैं उनका कार्डों में भी तलाश कर सकते हैं। ये इस पर मैं अब क्लिक कर रहा हूं तीसरी आखिरी चीज पर, और यहां मैं सही बुखारी देख रहा था ना, तो मैं मुअल्लिफ बुखारी के बारे में खुद इमाम बुखारी के बारे में लिखना चाह रहा हूं, तो मैंने लिखा है जी अल बुखारी, البخاری لکھا ہے, اور اوپر میں نے رینج کیا دی ہے تلاش کرنے کی, کہ کتابوں کی معلومات اور مؤلفین کی معلومات میں تلاش کریں, نہ قرآن مجید میں نہ صحیح بخاری میں, ٹھیک ہے جی. اور البخاری لکھا ہے میں نے, تو اب میں کلک کروں گا تو آپ دیکھیں کہاں جا رہا ہے, نہ قرآن مجید میں گیا نہ صحیح بخاری میں گیا, لیکن میں صحیح بخاری کھول کر پڑھ رہا ہوں. یہیں سے بیٹھے ہوئے میں نے امام بخاری کے بارے میں پورا اگر نام لکھتا تو وہ ان کا ایگزیکٹ نام آ جاتا. اس وقت چونکہ صرف البخاری لکھا ہے تو ان کے پاس کسی بھی کتاب کی معلومات میں, مؤلفین کی معلومات میں اگر البخاری کہیں بھی ہے تو وہ سب آ جائے گا. اگر میں ان کا پورا نام لکھتا تو وہ بالکل ایگزیکٹ ان کے بارے میں یہ چیز آ جاتی, ٹھیک ہے جی. اب مثال کے طور پر میں یہاں النووی لکھ لیتا ہوں اور اوپر جا کر کہتا ہوں بیانات فی بیانات الکتب میں, کلک کرتا ہوں النووی لکھا ہے, تو آپ دیکھیں کہ بطاقات الکتاب جتنی بھی ہے اس میں النووی کے بارے میں جو کچھ کہیں بھی معلومات ہوگی وہ آ جائے گی. اور اگر بالکل ایگزیکٹ معلومات لینی ہے تو ہم نے پورا نام لکھنا ہے. یہ ہو گیا. اس کے بعد اس مکتبہ شاملہ کی سب سے اہم ترین آئیکون ہے جس کو آج انشاءاللہ ہم سیکھیں گے. اس کو آپ ذرا دیکھیں کہ میں صحیح بخاری کو اس وقت بند کر رہا ہوں, واپس ہم مین انٹرفیس پر آ گئے ہیں. معذرت, تو اس میں آپ دیکھیں کہ یہ تمام آئیکونز ہم سیکھ چکے ہیں کہ کیا کیا اس میں کام ہے, اور کتاب فل اگر کھولی ہے ہم نے, فل ویو میں ہے, اس کی تمام چیزیں ہم نے سیکھی ہیں کہ اس سکرین پر کیا کیا فیچرز اور کیا کیا سہولیات ہمارے پاس ہیں. اب جو اہم ترین چیز ہم سیکھنے جا رہے ہیں اس کو آپ ذرا دیکھیں جی, یہ ہے بحث, ٹھیک ہے. جیسے ہی ہم اس کو کلک کریں گے تو ہمارے سامنے ایک یہ بڑا باکس کھل جاتا ہے. پورے شاملہ کی سب سے اگر آپ کہیں نا روح وہ یہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے, اوپر بحث لکھا ہے اور پھر یہ جو باکس آیا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سارے فولڈرز ہم پیچھے دیکھتے ہوئے آئے ہیں, آپ دیکھیں بیچ کے اس کالم میں وہ تمام فولڈرز موجود ہمیں دکھائی دے رہے ہیں. جس فولڈر پر میں کلک کروں گا بائیں جانب اس کی تمام کتابیں دکھائی دے رہی ہیں. یہ دیکھیں میں اس کو کلک کروں گا تو لیفٹ پہ کتابیں ہیں. علوم القرآن پر کلک کیا تو لیفٹ پر علوم القرآن کے فولڈر کی کتابیں آ جائیں گی. ہر فولڈر کے ساتھ ایک دوسرا فولڈر ہو بہو اسی نام کا ہے, اور جس کے ساتھ لکھا ہے مرقم عالین. اس کا مطلب یہ ہے کہ اوپر جو مین فولڈر ہے, مین فولڈر تو اس میں وہ ساری آفیشیل کتابیں ہیں جو کہ بالکل موافق للمطبوع ہیں, یعنی چھپی ہوئی ریئل کتابوں کو جس طرح شاملہ کے یونیکوڈ فارمیٹ میں داخل کر دیا گیا وہ کتابیں ہیں التفاسیر. لیکن آپ دیکھیں دوسرا جو فولڈر ہے مرقم عالین, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ کتابیں ہیں تفسیروں کی جو ضروری نہیں ہے کہ اوپر والے میں ہوں, یعنی اس میں ہونا ضروری نہیں ہے. مرقم عالین اصل میں ڈیجیٹل بکس ہیں, جن کتابوں کو ڈیجیٹائز کر کے رکھا گیا ہے وہ چھپی ہوئی کتاب کی وہ نہیں ہے, کاپی نہیں ہے اس میں جی. تو یہ چیز آپ کے سامنے ہے کہ دو دو فولڈر جو دکھائی دے رہے ہیں وہ التفاسیر کے بعد مرقم عالین اور علوم القرآن کے بعد بھی مرقم عالین, یہ ذیلی فولڈرز ہیں. ذیلی فولڈرز جتنے بھی ہیں وہ ڈیجیٹل بکس کے ہیں, چھپی ہوئی کتاب جو ریئل کتاب ہے وہ نہیں ہے. اور ان دونوں فولڈرز میں ضروری نہیں ہے کہ ہو بہو سیم کتابیں ہوں, مختلف اضافی کتابیں بھی ہو سکتی ہیں بلکہ زیادہ تر ہوتی بھی ہیں. تو یہ تمام فولڈرز وہی ہیں جو شروع میں ہم نے دیکھے تھے, اور جس فولڈر پر کلک کرتے ہیں تو بائیں جانب ہمارے اس فولڈر کی تمام کتابیں سامنے آ جاتی ہیں. جیسے متون الحدیث پہ کلک کیا ہے تو بائیں طرف تمام متون الحدیث کی کتابیں ہمارے سامنے ہیں. اس باکس کا مطلب کیا ہے, یعنی ہم نے وہ رینج بتانی ہے کہ کوئی لفظ, کوئی جملہ, کوئی حدیث, کوئی عبارتیں ہم نے اگر تلاش کرنی ہے شاملہ میں تو اس کے لیے ہم نے رینج بتانی ہے. آپ نے متون الحدیث میں تلاش کرنا ہے, تفاسیر میں کرنا ہے, ایک کتاب میں کرنا ہے, پورے مکتبہ شاملہ کی تمام کتابوں میں آپ نے کوئی عبارت کوئی چیز تلاش کرنی ہے, آپ نے کوئی ہیڈنگز تلاش کرنی ہے, کوئی عنوانات ہیں, کوئی فہرست جو کتاب کی فہرست ہوتی ہے اس میں سے کوئی ہیڈنگ ہے, تو سارے آپشن ہمارے پاس کھلے ہیں, ٹھیک ہے. तो अब अगर हम कोई भी चीज जब तलाश करेंगे दाएं तरफ जितने भी खाने हमारे पास हैं, दाएं तरफ जितने भी खाने हैं, असल में लिखने का काम तो यहां करना है। एक खाने में, दो में, तीन में, जितने में भी लिखेंगे,
मतलब कि आप
इसमें हम लिखेंगे और तलाश यहां करना है। अगर हमने तमाम किताबों में कोई लफ्ज तलाश करना है, तमाम किताबों में, मकतबा शामिला की, मिसाल के तौर पर ये मैंने लिखा है जी, मन हमला अलैना सिलाह फलैसा मिन्ना, ये पहली लाइन में लिखा है, और मैं ये कहता हूं कि ये पूरे मकतबा शामिला में तलाश किया जाए, मैं ये चाहता हूं। तो देखें, ये एक टैब है यहां, इस टैब को अगर मैं क्लिक करता हूं तो देखें तमाम किताबें, तमाम फोल्डर्स की, तमाम किताबों पर चेक लग गए हैं। आप जरा चेक देखें, जिस फोल्डर की, जिस फोल्डर पर भी क्लिक करूंगा बाएं तरफ किताबों का चेक लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये कि जमीउ कुतुबिल बरनामज पे क्लिक करने के बाद तमाम किताबें चेक्ड हो गई हैं। अगर मैं इन किताबों को दोबारा अनचेक करना चाहता हूं तो इल्गा जमीउल कुतुब, ठीक है, ये इसके बराबर में है, तमाम किताबों को कैंसिल कर दिया जाए, डीसेलेक्ट कर दिया जाए। जमी कुतुबिल बरनामज से सेलेक्ट किया था और इससे डीसेलेक्ट करना है, ये डीसेलेक्ट हो गया। तो पहले तो ये चीज समझ लें कि ये जो चार नीचे आइकॉन्स हैं या टैब्स हैं, इनका क्या मतलब है। जमी कुतुबिल बरनामज का मतलब है आप जो कुछ भी तलाश करना चाहते हैं पूरे शामिला में, और इसके बराबर में इसको आपने डीसेलेक्ट करना है कि मुझे पूरे शामिला में नहीं करना, ठीक है जी, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, आपने एक फोल्डर लिया शुरूहुल हदीस, इस पे क्लिक किया, आप देखें तमाम किताबें अनचेक्ड हैं, तमाम किताबें अनचेक्ड हैं। अब आप नीचे देखें, ये एक बटन है, इस पे क्लिक करें, अल मजमूआ कुल्लुहा का मतलब है पूरा फोल्डर, कंप्लीट फोल्डर। मैं जैसे ही क्लिक करूंगा आप देखें तमाम किताबें चेक लग गया है जी, तमाम किताबों को यहां चेक लग गया है, अब ये सेलेक्टेड हैं। अच्छा जी, आप इन्हीं किताबों को दोबारा डीसेलेक्ट करना चाहते हैं तो इसके बराबर में इल्गाउल मजमुआ पर क्लिक करें, ये डीसेलेक्ट हो जाएंगी, ठीक है जी। आप जहां भी क्लिक करें मुतूनुल हदीस अल मजमुआ कुल्लुहा पर सेलेक्ट करेंगे, ये चेक लगने के बाद ही शामिला को पता चलेगा कि आप असल में इसको तलाश करने जा रहे हैं, इसी फोल्डर की तमाम किताबों। जब तक आप इसको चेक नहीं लगाएंगे, अगर देखें इस तरह अनचेक्ड है किताबें, और मैंने यहां लिखा है मन हमला अलैना सिलाह फलैसा मिन्ना, और कोई भी किताब सेलेक्टेड नहीं है, ये देखें इल्गा जमीउल कुतुब को मैं क्लिक कर रहा हूं, इसका मतलब है कोई किताब अगर सेलेक्टेड हो भी तो उसको डीसेलेक्ट कर दिया जाए, ठीक है। अब जो मैंने लिखा हुआ है, अगर मैं तलाश करूं इसको इसी बटन से, आप देखें क्या लिखा हुआ आएगा कि आपने कोई भी किताब अभी सेलेक्ट नहीं की है, उसको चेक नहीं लगाया। आप पहले किताब और अपनी रेंज मुतय्यन करें कि आप कहां तलाश करना चाहते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं अर्ज कर रहा था कि अगर मैं मुतूनुल हदीस पे क्लिक करता हूं, जब तक मजमुआ कुल्लुहा या एक किताब, दूसरी किताब, तीसरी किताब, चौथी किताब, ये इसका मतलब है मैंने ये सेलेक्ट कर ली है, मैंने ये सेलेक्ट की है तो मैं जाकर यहां तलाश कर सकता, ठीक है जी। अत-तफासीर में गया मैंने, एक तफसीर से और तबरी से और ये तफसीर सालबी से चेक लगाए हैं, तो इसका मतलब है इन तीनों तफासीर में मुझे तलाश करना है, यहां आके मुझे वो तफसीर से मुतालिक चीज लिखनी है और तलाश करना। तो एक एक किताब को भी किया जा सकता है, पूरे फोल्डर को अल मजमुआ कुल्लुहा सेलेक्ट करें, डीसेलेक्ट करना है तो इल्गाउल मजमुआ, पूरे शामिला की किताबों को सेलेक्ट करना है तो यहां से, और डीसेलेक्ट करना है तो यहां से क्लिक करके। एक बहुत अहम चीज है कि हर फोल्डर के साथ जो जिमनी फोल्डर है, जेली फोल्डर है, उलूमुल कुरान के साथ भी यही मैंने कहा कि ये डिजिटल बुक्स का है। अब आप देखें कि अगर मैं उलूमुल हदीस को क्लिक करता हूं और पूरे फोल्डर को चेक लगा देता हूं यहां से, तो आप देखें जो जैली फोल्डर है वो चेक नहीं लगेगा। अब सॉरी, ये देखें मैंने यहां से इसको किया है, उलूमुल हदीस पे मैं चेक लगा रहा हूं तो उलूमुल हदीस मुरक्कम आलियन अनचेक्ड है। मुतूनुल हदीस पे मैंने चेक लगाया है अल मजमुआ कुल्लुहा, और इसका जो डिजिटल बुक्स का जैली फोल्डर है आपको देखें यहाँ अनचेक्ड है। इसकी वजह यह है कि ये एक फीचर देखें दाएं तरफ बिल्कुल राइट के कॉर्नर पर नीचे, इख्तियार उल मजमुआ यशमल मजमुआत हल फरहिया, यानी आप इसको अगर चेक लगाएंगे तो इसका मतलब ये है कि आपने एक सेटिंग दे दी है शामिला को कि अगर मैं मेन फोल्डर को चेक लगाऊं पूरे को तो जैली फोल्डर भी आप से आप सेलेक्टेड बुक्स हो जाए उसकी, मुझे अलग से हर फोल्डर के फरही फोल्डर को क्लिक करके चेक लगाने की जरूरत ना हो। अब आप देखें चूंकि राइट पे चेक लगा हुआ है, आप देखें अत तफासीर को जैसे ही चेक लगाऊंगा ये दूसरा खुद ब खुद हो जाएगा जी, पहले से सेलेक्टेड है। उलूमुल कुरान पूरा फोल्डर मैं चेक लगा रहा हूं, ठीक है, आप देखें उसका जैली फोल्डर आप से आप सेलेक्टेड है तमाम किताबें। इस वक्त देखें उलूमुल हदीस सब अनचेक्ड है और फरई भी अनचेक्ड है। अब मैं उलूमुल हदीस को पूरे मजमुए को क्लिक कर रहा हूं तो इसका जैली फोल्डर भी चेक्ड है, ठीक है जी, ये बात वाजे हो गई है। तो ये मैंने अर्ज किया कि ये तमाम फोल्डर्स हैं और इसके जैली फोल्डर्स हैं, ये किताबें हैं और ये चेक लगाने के तरीके हैं, इन सब को हम मैं अब इस वक्त कैंसिल कर रहा हूं, अनचेक कर रहा हूं, ठीक है। इसके बाद अहम चीज ये है कि जो भी फोल्डर हमने यहां क्लिक किया मुतून उल हदीस में मसलन क्लिक किया है, अब इसमें बहुत सारी किताबें हो सकती हैं, ठीक है। अब इस फोल्डर के अंदर आप चाहते हैं कि आपको आपको मालूम हो कि मसलन मुस्नद अल बज्जार कहाँ है, आप चाहते हैं बराए रास्त इस फोल्डर में मैं मुस्नद अल बज्जार जैसे मैंने यहां लिखा तो पहले ही हमने आइकॉन पर क्लिक करना है कि इस फोल्डर में तलाश करें। ये देखें मैंने मुस्नद अल बज्जार लिखा था तो इस फोल्डर में दरमियान में मुस्नद अल बज्जार हमारे सामने आ गया। दोबारा मैं कह रहा हूं कि सही मुस्लिम लिखा क्लिक किया तो देखें सही मुस्लिम जहां जहां आ रहा है वो किताब हमारे सामने आ रही है। दोबारा भी क्लिक कर सकते हैं जहां भी सही मुस्लिम है दो जगहों पर। तो यहां इस बार में टाइप करने के बाद मुत्तसिल आइकॉन को क्लिक करने का मतलब है कि जो फोल्डर दाएं तरफ हमने सेलेक्ट किया था उस फोल्डर के अंदर आप वो किताब तलाश करें, ठीक है। अगर पूरे शामिला में किताब तलाश करनी है तो आप देखें कि इसी को अगर आप मौत्ता मालिक लिखें मौत्ता मालिक आपने लिखा है और पूरे शामिला में करना है तो फिर पहले पर नहीं सेकंड पे जाना है जी। ये सेकंड पे क्लिक किया इसका मतलब यह है कि वो कहीं भी होगी किताब वो आ जाएगी। आप अरबी जबान की नहव की कोई भी किताब इस वक्त मुतून उल हदीस पर आपने क्लिक किया हुआ है लेकिन आपने यहां कोई भी किताब किसी भी फन की जो कि शामिला में मौजूद है, मिसाल के तौर पर कोई ऐसी किताब जिसका नाम हिदाया से आ रहा है, अल हिदाया लिखा मैंने और यहां क्लिक किया तो आप देखें कि वो तमाम किताबें जिसमें अल हिदाया नाम आ रहा है उसको दोबारा क्लिक करते चले जाएं और ये किताबें आगे आ रही हैं, ठीक है। तो इस खाने में लिखेंगे तो फोल्डर से तलाश करना है और इस खाने में लिखने के बाद अगर पूरे शामिला में तो इसको क्लिक करें। अच्छा, जो भी किताब हमने पहले से जो है क्लिक किया हुआ है जिस किताब को भी हमने क्लिक किया है उसका बिता का वही कार्ड है जो यहां से खुल सकता है। ये वही चीज है जो पहले भी हम सीख चुके हैं। अब बहुत अहम बात क्या है जो बहुत दिलचस्पी है और अक्सर लोग इससे वाकिफ भी नहीं होते कि आप चाहते हैं कि मुतून उल हदीस पर या उलूम उल कुरान पर या तखरीज की किताबों पर या सीरत की किताबों पर या तारीख के फोल्डर में आपका हमेशा काम पड़ रहा है, कोई प्रोजेक्ट है, कोई इल्मी काम है, कोई रिसर्च है, कोई आर्टिकल है जिसमें आपको 1-2-10 किताबें या एक पूरे फन की किताबें या अरबी जबान की किताबें या नहव की किताबें उसका पूरा फोल्डर हर वक्त दरकार है, हर वक्त उसमें कोई ना कोई चीज आप तलाश करते रहते हैं, तो अब उसके लिए तो ये है ना कि आप जब भी शामिला खोलें वो फोल्डर आपके सामने हो, उसको आप सिर्फ चेक लगाएं और आप अपनी मतलूबा इबारत लिख कर वहां तक पहुंच जाएं, ठीक है, ये आसान तरीका होता है। तो अब इसके लिए यूं है कि वो एक फोल्डर दो फोल्डर्स या 10 फोल्डर्स अपने मतलूबा फन काम या प्रोजेक्ट से मुतालिक अपने खुद भी बना सकते हैं। ये सारे फोल्डर जो हमारे सामने हैं, तफासीर उलूम उल कुरान, ये तारीख, सीरत, फिका हनफी, फिका मालकी, ये देखें असीरा व शमाइल, ये तो शामिला ने बनाए हैं ना। हम अपना इनमें से कोई मतलूबा किताबें बाहर निकालना चाहते हैं जो हर वक्त हमारे सामने हो। जैसे हमारे घर में एक लाइब्रेरी है और उस लाइब्रेरी में बहुत सी किताबें, कुछ किताबें ऐसी होती हैं जिसको हम अपनी मेज पर रख लेते हैं, हमारे सामने पड़ेंगी, इस वक्त हमारा काम इनसे मुतालिक है, हम बार बार उस लाइब्रेरी में जाकर चीजें तलाश करने की जरूरत नहीं है। अपने मौजूदा जो प्रोजेक्ट है उससे मुतालिक 2, 4, 10 चीजें हमने अपने सामने रखी हुई है कि इस वक्त इस इनकी जरूरत है, बस और किताबों की जरूरत नहीं है। इसी तरह आपको शामिला में ये सहूलत है कि मिसाल के तौर पर जिन लोगों का उलूमुल कुरान की किताबों से हर वक्त साबका पेश आ रहा है, तो ये देखें उलूमुल कुरान, पहले मैंने सारी किताबों का अनचेक किया है, अब उलूमुल कुरान को क्लिक किया है। क्लिक करने के बाद अब मैंने क्या करना है, पूरा अगर फोल्डर रखना है जी उलूमुल कुरान का हर वक्त अपने सामने, क्योंकि मेरा काम है इससे, तो मैं देखें चेक लगाऊंगा अल मजमुआ कुल्लुहा, चेक लगाया, ये देखिए तमाम किताबें इस वक्त चेक्ड हैं, सेलेक्टेड हैं। अब ये उलूमुल कुरान को मैं चाहता हूं कि यहां ये देखें जी दाएं तरफ यहां लाकर अपने सामने रख लूं हर वक्त, तो ये आखिरी ऊपर जो है लेफ्ट पर आप देखें ये आइकॉन, इस पर क्लिक करें। उलूमुल कुरान हम पहले ही सेलेक्ट कर चुके हैं और हमने यहां मिसाल के तौर पर ये लिखा है जी अपना कोई नाम देना है हमने, मसादिर फी उलूमुल कुरान, ठीक है जी, मसादिर फी उलूमुल कुरान, मैंने खुद नाम दे दिया एक फोल्डर को अपना, और यहां देखें मैं सेव कर रहा हूं, ये सेव का बटन है यहां, जैसे ही मैं क्लिक करूंगा आप देखें ऊपर नाम लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होगा कि ये सेव हो गया है, ये उस पूरी फहरिस्त से बाहर आ गया है, ठीक है जी। अब मैं गया जी, मैं फिकह मालकी है, पहले मैंने अनचेक किया तमाम किताबों को, फिकह मालकी पे क्लिक किया, पूरे फोल्डर को क्लिक किया, चेक लगा दिया। अब मैं फिर दोबारा जा रहा हूं उसी जगह पर, अब मैं लिखता हूं जी मराज मराजुल फिकह मालकी लिख देता हूं, ठीक है, मराजुल फिकह मालकी या मराज फिल फिकह मालकी, जो भी लिखें, मैंने एक नाम लिखा है जी, ठीक है, ये नाम भी आ गया है। अब मैं इसको बंद कर रहा हूं, इसको मैंने बंद कर दिया है, आप देखें राइट पे नीचे बॉक्स में ये दिखाई दे रहा है आपको, ये देखें मराज फी उलूम मसादिर फी उलूम कुरान का भी फोल्डर बन गया है और मराज फिकह मालकी का भी बन गया है। इसका क्या मतलब है कि जब भी मैं आ रहा हूं मुझे फिकह मालकी के इस तमाम किताबों को, इन तमाम किताबों की अक्सर जरूरत पड़ती है, मैं जब भी शामिला आकर खोलूं तो मैं इस बजाय इन तमाम किताबों में जाके कोई चीज बार बार फिकह मालकी की या उलूमुल कुरान की तलाश करूं, ये पूरा फोल्डर हर वक्त मेरे सामने है। तो देखे जी अनचेक किया है तमाम किताबों को, यहां से मैंने क्या किया जी मसादिर फी उलूमुल कुरान, सिर्फ इसको चेक लगाऊंगा और ऊपर लिखूंगा इबारत उलूमुल कुरान में जिस किताब में भी जो चीज चाहिए वो सिर्फ इन्हीं इसी फोल्डर में तलाश करके देगा। ये हर वक्त आगे सिर्फ यहाँ क्लिक करना है मुझे जाकर उलूमुल कुरान इस फहरिस्त में तलाश करने की या कोई और चीज तलाश करने की, फतावा का फोल्डर तलाश कर, फतावा का बना लें आप, हदीस की किताबों का बना लें, हदीस की शुरुआत का बना लें। अच्छा जी, बहुत से जो रिसर्च आर्टिकल्स हैं ये देखें बुहूस व मसाइल, इसका बना लें, जिसको कुतुबुल अल्बानी, एक शख्स को शेख अल्बानी की किताबों से मुतालिक कोई प्रोजेक्ट है हर वक्त उनकी किताबें देखनी है, तो देखे कुतुबुल अल्बानी को क्लिक किया, आप वहां जाकर एक फोल्डर बनाएं और कुतुबुल अल्बानी यहाँ आ जाएगा, उसको क्लिक करें, चेक लगाएं और यहाँ तलाश करें कुतुबुल अल्बानी में। तो ये एक अहम चीज थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप जब रेंज जिस तरह मुतय्यन करते हैं इसी तरह आप अपना फोल्डर भी बना सकते हैं। एक और चीज बताऊं कि ये तो है ना एक एक पूरा फोल्डर ले लिया मैं सबको अनचेक करके, एक और चीज आपको बता रहा हूं वो भी बहुत काम की है, मसलन शुरूहुल हदीस है, इसमें आपके पास आपको 5 किताबों की हर वक्त जरूरत है, अहकामुल कुरान की किताबें हैं मौजूद इसमें, आपको 5 अहकामुल कुरान की या 5 तफासीर में बार बार जरूरत पड़ रही है, तो आप वो जाएं तलाश करें। जैसे शुरूहुल हदीस में आपने एक ये ले ली, दूसरी ये ले ली, तीसरी ये ले ली, ये तीन किताबें हो गई, पांचवी ये हो गई जो आपकी मतलूबा किताब है, और यहां चले जाएं। ठीक है, अब आप लिखें जी कोई नाम दे दें, अल कुतुबुल मुख्तारा फी शुरूह अल हदीस मसलन। ठीक है जी, अब आपने इसको एक नाम दे दिया तो वही पांच किताबें सिलेक्टेड हो गई हैं, और ये देखें ये किताबों का फोल्डर भी बन गया है। तो ये नहीं है कि आप पूरा एक फोल्डर ही लेंगे, आप पूरे शामिला में से जो किताब चाहे सेलेक्ट करें, पहले हर एक चीज को अनसेलेक्ट कर लें, यहाँ डीसेलेक्ट करें, फिर जिस फोल्डर में जाके जो जो किताब आपने सेलेक्ट किया और जाके फोल्डर को नाम दे दें। ठीक है जी, अब आपके सामने मेरे सामने बाज़ औक़ात 5-10 फोल्डर बने हुए होते हैं, मैं चाहता हूँ कोई फोल्डर सबसे ऊपर रहे, तो आप देखें यहीं जाएं, आप इसको क्लिक किया, ये तमाम फोल्डर हमारे सामने हैं, आप देखें आप चाहते हैं कि शुरूल हदीस वाला ऊपर आना चाहिए, तो ये देखें एरो की है अप एंड डाउन, आप इसको अप करेंगे तो शुरूहुल हदीस अब ऊपर आ गया है, नीचे भी यहाँ भी आप देखें वो ऊपर आ गया है। आप कहते हैं कि फिक्हे मालकी वाला ऊपर करना है या इसको शुरूहुल हदीस को सेकंड पर करना है, तो आप देखें डाउन एरो करें, ये सेकंड पे आ गया। ठीक है जी, तो बाज औकात 5-10-20 फोल्डर भी लोग बनाकर रखते हैं अपने काम के, तो उनको ऊपर नीचे भी इस तरह किया जा सकता है। अच्छा, अब कोई फोल्डर बना लिया है, जैसे मराजुल फिक्हिल मालकी है, काम खत्म हो गया है, आप कहते हैं अब इसकी जरूरत नहीं है, मुझे यहां नहीं चाहिए, आप इसको सेलेक्ट करें और यहां क्लिक करें, ये देखिए रिमूव, क्रॉस पर क्लिक करेंगे रिमूव हो गया, ये रिमूव हो गया। ठीक है जी, ये बात वाजे हो गई। अब आप देखें ऊपर, ऊपर आपके सामने तीन चीजें हैं, अन नुसूस, अल अनावीन, अत्तालीकात। ये तीन क्या मतलब है, इसका मतलब है साथ ही आप देखें लिखा हुआ है बहस फिन नुसूस, यानी आप जो कुछ भी इस पूरे बॉक्स से तलाश करने जा रहे हैं शामिला की किसी भी जगह पर, तो वो आप किसी भी किताब के हर तमाम नुसूस के अंदर तलाश करेंगे, या उस किताब के जो अबवाब और हेडिंग्स और सब हेडिंग्स हैं उनमें तलाश करेंगे, या पूरे मकतबा शामिला की किताबों में जहां जहां आपने अपने जाती नोट्स लिखे हैं, खुद अपने जाती नोट्स लिखे हुए, उनको भी आप तलाश कर सकते हैं। तो आखिरी चीज जो है नोट्स अत्तालीकात, इसका मतलब हवाशी नहीं है, इसका मतलब है हमने जो नोट्स लिखे हैं किसी भी किताब किसी भी सफ़े पर, अगर हमने लिखे हैं तो जाहिर है हमें याद रखना होगा। इसके लिए एक बहुत बेहतर अच्छी सूरत यह है, एक टिप यह है कि जब भी कोई तालीब कोई नोट लिखें तो उसके आखिर में कोई ऐसा जुमला या अपना नाम या कोई ऐसी चीज लिखें कि जिसके बाद जिसको आप याद रख सकें, और उसी को टाइप करके आप तलाश कर लें। यानी आपने अगर किसी शरह की किसी तफसीर में हदीस की किसी शरह में किसी जगह पर कुछ लिखा है और आपने आखिर में अपना नाम मोहम्मद अब्दुल्ला लिख दिया, अपना सर नेम लिख दिया है, हर जगह पर आप अपने नोट पर आखिर में एक कोई चीज लिख देते हैं ताकि आपको याद रहे कि कहाँ है, और जब भी तलाश करना है तो आप देखें इस पूरे बॉक्स में तालीकात पे आएंगे और यहाँ अपने जाती नोट की जो चीजें आपको याद होंगी वो लिखेंगे, पूरे शामिला में से जहां होगी या जो किताब आपने सेलेक्ट की है वो नोट आपका जाती तलाश करके शामिला देगा। नंबर दो, अनावीन में क्या है, मैंने अर्ज किया कि हेडिंग्स में मिसाल के तौर पर अब हम इसको प्रैक्टिस भी कर लेते हैं ना, तालीकात तो चूंकि मेरी मेरी कोई तालीकात या नोट्स इस वाले वर्जन में मौजूद नहीं है, वो मैं बता चुका हूँ, आप जब चाहें अगर तालीक लिखें नोट लिखें तो तलाश कर सकते हैं, वो हमारी अपनी जाती इबारत होगी। अनावीन का मतलब ये है कि कोई भी उनवान है, मसलन उलूम उल हदीस पर मैंने क्लिक किया, जाहिर है इसमें मुस्तलाहात उल हदीस की और हर तरह की चीज हो सकती है, अब मैं चाहता हूँ उसकी हेडिंग्स में उलूम उल हदीस में बहुत सी ऐसी किताबें होंगी जिनके अबवाब में मसलन अल हदीस ज़ईफ लिखा है, ज़ईफ हदीस पर कलाम है। ठीक है जी, मैंने यहां चेक लगाया अल अनावीन और सेलेक्ट किया है उलूम उल हदीस अल मजमुआ कुल्लुहा, एक किताब नहीं बल्कि पूरा फोल्डर, तो अनावीन का मतलब यह है इस फोल्डर की तमाम किताबों में जो अबवाब और हेडिंग्स होंगी उसमें अल हदीस ज़ईफ तलाश करेगा, बिल्कुल हू बहू। क्यों, ये देखिए चेक लगाया हुआ है मैंने, मीम का मतलब है मुताबिक, यानी जैसे मैंने ला में तारीफ के साथ जिस तरतीब के साथ दो या तीन या दस अल्फाज लिखे हूबहू यही इबारत चाहिए मुझे, ठीक है जी, बगैर अलिफ लाम के भी नहीं आएगा, हूबहू यही आएगा क्योंकि चेक लगा हुआ है। अब मैं क्लिक कर रहा हूं, मैंने क्लिक किया, अब आप देखें कि जिस किताब के उनवान में किसी भी जगह पर, ये देखें वो उनवान ऊपर आ रहा है, वो हेडिंग्स है किताब की, ठीक है, किताब की हेडिंग्स है, उसमें ये उनवान आ रहा है, आप किसी उनवान को कहीं भी जाकर तलाश कर सकते हैं। ये बात समझ आई आपको जी? ये देखें किताबों के नाम है, जितने भी रिजल्ट आए हैं नीचे वो आप देखें, 34 रिजल्ट हैं, और उलूमुल हदीस की 237 किताबों में से तलाश किया गया है, 34 नताइज आए हैं, और ये आपके सामने, एक एक पे क्लिक करेंगे तो वो खुलता चला जाएगा, ठीक है, जिस पर क्लिक करेंगे वो खुल जाएगा जी। ये हो गया। अच्छा, इसके बाद हम, ये बात मैंने आपको समझा दी है, किसी भी इल्म और फन के हवाले से आपको कोई मसला है, आपके इल्म में है कि ये उनवान जरूर होगा, मसलन फिका हनफी की किताबों में उमूम बलवा है तो आपने उमूमुल बलवा लिख दिया, या मा ताउमु बिहिल बलवा लिखा और उसूल फिक की किताबों को सेलेक्ट कर लिया पूरा फोल्डर, तो उमूम बलवा पर जितने भी उनवानात होंगे या मा ताउमु बिहिल बलवा, वो सब के सब अनावीन आपके सामने आ जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ, आप मसाइल तलाश कर रहे हैं, अल हदीसुल गरीब लिखा आपने कि भाई मुस्तलाहातुल हदीस की किताबें सेलेक्ट करनी है और अल हदीसुल गरीब मैंने देखना है, तो वो सारे अनावीन आपके सामने आ जाएंगे। अब हम देख रहे हैं जी अन्नुसूस, अन्नुसूस में क्या है, अन्नुसूस में का मतलब ये है कि इसको चेक लगाने के बाद जो भी चीज आप तलाश करेंगे, जो इबारत भी तलाश करेंगे, वो हेडिंग्स में नहीं होगी, वो आपके अपने जाती नोट्स में भी नहीं तलाश करेगा, बल्कि पूरी किताबों में हाशियों के समेत, हेडिंग समेत, असल मतन और नस के समेत जहां भी होगा वो नुसूस के अंदर तलाश करेगा, किताबों के नुसूस के अंदर तलाश की जाएंगी। जैसे मैं अब इसको डीसेलेक्ट कर रहा हूं और मिसाल के तौर पर मुतून उल हदीस है, इसको मैंने चेक लगा दिया है, यहाँ पूरे फोल्डर को सेलेक्ट कर दिया है, और मैं कोई ऐसे मिसाल के तौर पर यही रिवायत मन हमल अलैन सिलाह फलैस मिन्ना मुतून उल हदीस के पूरे फोल्डर में तलाश की जाए। एक बहुत अहम चीज ये है कि आप कहते हैं कि जी ये किताब जब तलाश करेगा तो जाहिर है वो अपने बाय डिफॉल्ट जो सिस्टम में सेटिंग है, शायद अलिफ बाई सेटिंग है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में किताबें अरेंज्ड हैं, तो वो ये हदीस उसी तरह शामिला तलाश करेगा। आप चाहते नहीं, ये हदीस इन्हीं अल्फाज के साथ सबसे पहले जिस किताब में आई है पहले वो आए, फिर दूसरा रिजल्ट आए, फिर उसके बाद जो किताब है तारीखी लिहाज से जो मुकदम किताब है पहले वो आना चाहिए, और जुमला आपने ये लिखा है, ठीक है जी। तो इसके लिए देखें ये एक है जहां आपने चेक लगाना होता है, तरतीब नताइज हस्ब वफयात मुअल्लिफीन, यानी जितने भी रिजल्ट्स आप देंगे वो मुअल्लिफीन की सने वफात के लिहाज से दें, आप अपनी जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग है शामिला की मुझे वो मतलूब नहीं है, मैं तारीखी लिहाज से देखना चाहता हूँ कि ये रिवायत और ये अल्फाज हदीस की किताबों में पहले कहाँ आए बाद में कहाँ आए। ये अब आप देखें, मैं इसको चेक लगा रहा हूँ, ये इसको तलाश कर रहा हूँ, जैसे ही मैंने इसको प्रेस किया है तो ये तलाश करना शुरू कर दिया, ये तलाश शुरू हो गई है। आप देखें मैं इसको पॉज कर रहा हूँ नीचे, आप जरा बटन सीख लें, जैसे ही कोई चीज हम तलाश करना करने लगते हैं तो पॉज भी किया जा सकता है, इस तलाश के दौरान में ये मैंने पॉज किया है जी, तलाश रुक गई है, वहीं पॉज हो गई है, ठीक है। मैं दोबारा प्ले दबाऊंगा, यहां बराबर में तलाश फिर शुरू हो जाएगी उसी की, ठीक है। किताबें आपके सामने 175 हैं, मुतून उल हदीस में मालूम हुआ कि टोटल 175 बुक्स हैं, अभी तक 34 नताइज जमा कर चुका है, 27 नताइज जमा कर चुका है, ठीक है जी, और अभी तक 34 तक पहुंचा है शामिला, क्योंकि हमने पॉज किया हुआ है ना, ठीक है। इसके बाद अगर हमने स्टॉप दबा देना है यहाँ बीच में ही, पॉज पे तो रोकने के बाद दोबारा हम शुरू कर सकते हैं ना, प्ले कर सकते हैं, पॉज कर लिया है, लेकिन अगर मैंने इसको बीच में रोक लिया है तो ये क्यों, ये इसलिए दिया है बटन कि अगर आपकी कोई मतलूबा चीज आपके सामने आ गई है जो आप एक या दो या चार तलाश करना चाहते थे और अब आप चाहते हैं कि मजीद तलाश ना करें, तो फिर स्टॉप दबाएंगे, बस यही नतायज इसी पर रुक जाएगी सर्चिंग। ठीक है जी, यानी आगे मजीद 38 किताबों के अलावा मजीद किसी किताब में शामिला तलाश नहीं करेगा। अगर आप प्ले करेंगे तो देखें वो बढ़ता चला जाएगा आगे, वरना आपने पॉज किया और फिर स्टॉप किया तो वो वहीं रुक जाएगा। अब आप देखें कि ये जो नतायज है 100 200 400 हो सकते हैं, इनमें ऊपर नीचे जाने के लिए यूं भी क्लिक कर सकते हैं। ये देखें जिस नतीजे पर क्लिक कर रहा हूं ऊपर रिजल्ट आ रहा है। ठीक है जी, आप नीचे जाएं, जिस पर क्लिक करेंगे ऊपर रिजल्ट आ जाएगा। अच्छा, अब इस ये एरो के जरिए से भी हम जा सकते हैं। ये देखें एरो यूज करके मैं ऊपर जा रहा हूं, रिजल्ट जो है एक एक करके देख रहा हूं, वापस एरो के जरिए से नीचे आ रहा हूं। ठीक है जी, नीचे आ रहा हूं और एक 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 करके उसको चेक कर रहा हूं। अच्छा जी, तमाम रिजल्ट सामने आने के बाद मैं इसको पूरा कर देता हूं सर्च को। ये सर्च जो है हम पूरा करते हैं और फिर आप देखें, बल्कि यहां मैं इसको स्टॉप करता हूं ताकि आप इस चीज को भी समझें। देखिए मैंने इसको पॉज किया है, 86 बुक्स से वो तलाश कर चुका है और नतायज 57 है। मैं अब स्टॉप कर रहा हूं, मैंने जैसे ही स्टॉप किया आप देखें खत्म हो गई सर्चिंग, यानी अब 86 ही तलाश की है क्योंकि वहां मैंने रोक लिया था। ऊपर नीचे यहां से जा सकता हूं। कोई ऐसा रिजल्ट जो आपको आपने देख लिया और आपको मतलूब नहीं है, आप चाहते हैं कि इस लिस्ट से इसको बाहर कर दिया जाए, जी मैंने ये देख लिए जितने भी नतायज 57 आए हैं, मुझे ये नंबर 6 नहीं चाहिए। ठीक है, अगर मुझे नंबर 6 नहीं चाहिए तो मैंने इसको सेलेक्ट किया। आप देखें यहां रिमूव का एक बटन है, यहां क्रॉस, इसको जैसे ही क्रॉस करूंगा ये नंबर 6 जो है अलफितन जो है इसमें से ये निकल जाएगा इस किताब से। आप देखें ये डिलीट हो गया। तो जिस रिजल्ट को हम डिलीट करना चाहें उसको सेलेक्ट करें और यहां से डिलीट कर दें, सेलेक्ट करें यहां से डिलीट कर दें। ठीक है, अच्छा जी, अब एक और चीज नीचे बहुत अहम है वो जरा देख लें कि ये हमने हदीस तलाश की थी जिसके 54 नतायज आए हैं, ये सब के सब हमारे सामने हैं, एक दो हमने यहां से सेलेक्ट करके डिलीट भी कर दिए हैं तो अब उतने नहीं रहे। तो जो हमने देखे हैं उसको हम चाहते हैं कि बार बार मैं मन हमल अलैना सिलाह फलैसा मिन्ना, मैं बार बार मुझे लिख कर तलाश करने की मुतूनुल हदीस में जरूरत ना पड़े, इस सर्च को मैं महफूज कर लूं, इस सर्च को मैं महफूज कर लूं और जब भी आऊं तो एक क्लिक पर, एक डबल क्लिक पर यही सर्च खुल जाए। ठीक है जी, ये देखें आपके सामने कितने रिजल्ट हैं, 57 है हमारे सामने, क्यों कि कुछ हमने मिटाए भी हैं। अच्छा जी, मैं यहां मन हमला सिर्फ अपनी याददाश्त के लिए, कोई भी आप नाम लिखें, ये बार है नीचे लेफ्ट पर मन हमला अलैना सिर्फ लिखता हूं और बराबर में इसको सेव कर देता हूं। इसी सर्च को जो मैंने अभी की थी इसको मैंने सेव किया, जैसे ही मैंने सेव किया एक दफा हमें इसको प्रेस करना है। अब एक जगह है जहां ये सेव हो चुकी है, मैं इसको बंद कर रहा हूं, 57 नतायज है, ये देखिए मैंने बंद कर दिया है। अब मुझे यही दोबारा आकर अगले दिन खोलकर शामिला को यही सर्च और यही नतायज चाहिए। आप देखें ये लिखा है जी, नतायज बहस महफूज़ा, आपने कोई सर्च महफूज कर दी थी उसके रिजल्ट आपने यहां रखे हुए हैं। ये मैंने क्लिक किया, ये देखें, ठीक है जी, ये हमारे सामने आ गया, इसको डबल क्लिक करूंगा तो वो दोबारा आ जाएंगे। तो जो चीज आप यहां लिखेंगे, जो नाम लिखेंगे वो आपके सामने यहां आ जाएगा। ठीक है जी, ये बात वाजे हुई है। तो यहां हम ये कर रहे हैं और आखिरी जो चीज है इस सर्चिंग में या जो जो भी रिजल्ट्स हमारे सामने आए हैं, इन रिजल्ट्स के अंदर 2-3 मिनट के बाद इंशाल्लाह हम इसको सवाल जवाब के लिए वक्फा कर देंगे, इस सेशन को खत्म कर देंगे। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि जो बिल्कुल लेफ्ट पर लेफ्ट के कॉर्नर पर एक आपको आइकॉन दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपके सामने ये वाले रिजल्ट आ रहे हैं मन हमला अलैना सिलाहा, इनके अंदर इनको पढ़ने के बाद आप इन्हीं सफात पर कोई चीज सर्च करना चाहते हैं, सफात आपके सामने खुल गए हैं, मुतूनुल हदीस की किताबों के रिवायत आपके सामने लाई गई है, अब आप कहते हैं कि इसके अंदर मुझे कोई चीज तलाश करनी है, तो आपके सामने ये वही बॉक्स आ जाएगा, आप यहाँ लिखेंगे और तलाश करेंगे तो वो इन्हीं सफात के अंदर भी सर्च हो सकता है। यानी एक तो मुतूनुल हदीस में इस हदीस को तलाश किया, रिजल्ट आ गए, इस बटन से जाकर हमने इन रिजल्ट वाले सफात पर भी कोई खास चीज हमें दरकार है तो वो भी हम तलाश कर सकते हैं यहाँ से, ठीक है जी। तो ये कमोबेश सारी चीजें हैं जो कि ये सर्च से मुतालिक थी, ये हो चुकी है, मैंने सारी चीजें वाजे कर दी हैं। आखिरी ये देख लें, एक चेक है, ये चेक लगाने का है जी, तजाहल अल फुरूक बैन अल हमजात व नहविहा। हम जब यहाँ कोई भी इबारत लिखते हैं, जहां मैंने मन हमल अलैना सिलाहा लिखा है, जब भी कोई इबारत लिखते हैं तो मिसाल के तौर पर अलिफ इस्तेमाल होता है हमजा के साथ, हमजा के बगैर, ऊपर हमजा नीचे हमजा, सिर्फ अलिफ भी हम लिखते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इन नमल आमाल में सिर्फ अलिफ लिख दिया, नीचे हमजा नहीं लगाया। अच्छा, इसी तरह वाव के ऊपर मोमिन, वाव के ऊपर हमजा भी होता है, उर्दू में हम मोमिन कह देते हैं, बंदा है मोमिन, बगैर हमजा के भी वाव होता है। अच्छा, इब्ने माजा में आखिर में हा है, उसमें बाज़ोकात गलती से ताए मरबूता लोग लिखते थे, इब्ने माजा यानी माजा के बजाय माजात लिखते हैं, ताए मरबूता, तो ताए मरबूता हो, हा हो, अलिफ हमजा के साथ हो, अलिफ बगैर हमजा के हो, वाव बगैर हमजा के हो या उसके साथ हो, या के नीचे दो नुक्ते हो, या अलिफ मकसूरा वाली या उज्मा की तरह हो, जैसे हम कहते हैं जी ये सारे नाम हैं, तो हम कहते हैं ना मसाजिद उज्मा, तो अब मिसाल के तौर पर इस तरह की जो या है जिसपे कोई वो नहीं है, वो अलिफ मकसूरा का जो प्रोनंसिएशन देती है, तो बाज औकात हम चीजें टाइप कर रहे होते हैं तो शामिला जो हम टाइप करेंगे वही तलाश करके देगा। अगर आपने इसको चेक लगा दिया है तजाहल फुरूक पर, तो इसका मतलब यह है कि अलिफ का, वाव का, ये का, ताए मरबूता की शक्लों के जितनी भी फर्क है उसको इग्नोर कर दिया जाए, मैं जैसे भी टाइप करूं या वो उसको इग्नोर करें, मैं इन नमा का अलिफ बगैर हमजा के लिखूं, आप इग्नोर करके हमजा वाला ही दिखाएं मुझे, ठीक है। अगर आपने तजाहल नहीं क्लिक किया है तो फिर आप इन नमल आमाल में इन नमा लिखते रहेंगे बगैर हमजा के, शामिला कहेगा कि इन नमल आमाल बिनियात कोई हदीस ही नहीं है, क्योंकि उसके पास हमजा के साथ है अलिफ। अगर आपने इसको चेक लगाया है तो फिर आपको वो तलाश करके देगा। इसलिए बेहतर ये है कि दो चीजों के चेक लगे रहें, एक ये भी तजाहल फुरूक, और दूसरा ये भी आमतौर पर अच्छी एक चीज है कि आपको सन वफात के लिहाज से किताबों के जो मौलिफीन है चीजें तलाश करके देता है। और मुरतबा जो यहाँ लिखा है, मुरतबा का मतलब ये है कि हम कई चीजें तलाश कर रहे हैं, एक ही सफ़े में कई अल्फाज हमने लिख दिए, ये है ये है, यानी किसी शख्स को मन हमला अलैना सिलाह के अल्फाज नहीं याद, लेकिन उसको इतना मालूम है या इन्नमल आमालु बिन्नियात वाली हदीस है, उसके इल्म में है कि नियात का लफ्ज भी है, हिजरतहु का लफ्ज भी है और आमाल का लफ्ज भी है, हर खाने में अलग अलग लिखे और वो यहाँ तलाश करे, तो एक ही सफ़े पर इन्नमल आमालु बिन्नियात वाली रिवायत में या हदीस जिब्रील में ईमान भी है, इस्लाम भी है, अमतु भी है, तलीदा भी है, तो कुछ अल्फाज याद हैं, वो हर खाने में अलग अलग लिखें और ये चेक हटा दें, एक एक लफ्ज लिखें, चेक हटा दें और फिर आप सर्च करें तो वो आपके सामने सारे नताएज आ जाएंगे। तो ये आज की जो आज का सेशन था उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें वाजे हो चुकी हुई हैं और इस सारी चीज़ों को हम बंद भी कर रहे हैं इसके साथ कि ये जो एक आइकन जो है यहाँ ये येलो वाला, इसको इसमें कोई ऐसी खास चीज नहीं है, सिर्फ ये समझना है कि जब भी शामिला आपने खोल के बंद किया आखिरी चीज क्या थी जो आपने सर्च की थी, आखिरी चीज जब भी आप आकर खोलेंगे, अगर जो आखिरी चीज आपने तलाश की थी वो आप चाहते हैं कि मुझे बगैर किसी दिक्कत के वो डायरेक्ट मिल जाए, तो आप इस येलो वाले पर फतह नताइज आखिर बहस यानी आखिरी सर्चिंग मुझे खोल कर दे दें, जैसे क्लिक करेंगे तो देखें जो आखिरी चीज हमने तलाश की थी वो शामिला ने हमें फौरी निकाल कर दे दी है। इसके लिए हमें कुछ भी नहीं करना, जब हम वापस आएंगे आखिरी चीज जो भी तलाश की है वो इस पर क्लिक करेंगे वो खुल जाए। तो ये है आखिरी चीज तलाश करना जो पहले हो चुकी हुई, और ये है आखिरी वाला जो आइकॉन जो आज हमने सीखा है, जिसमें कोई भी चीज हमने देखें ये महफूज की है, ये जो जो महफूज है ये सारी चीजें यहाँ मौजूद हैं, ये हमने इन नामों से ये सारी चीजें मसलन महफूज कर रखी हुई हैं, जब भी डबल क्लिक करेंगे वो हमारे पास सर्च हु बहू वही आ जाए। मैं जरा मजीद आगे बढ़ रहा हूँ, इसी आप देखें इसी फंक्शन को हम मजीद सीख रहे हैं। आखिरी चीज, अभी सवाल हुआ है और हमेशा सवाल होता है शामिला को सीखने वालों का कि देखें ये बॉक्स जितने भी हैं और ये वाव का टैब और औ का टैब, इसका क्या मतलब हुआ जी? इसको जरा सा समझ लें एक मर्तबा, ये सारे मसले आपके हल हो जाएंगे, यानी इतनी आसानी हो जाएगी आपको चीजें तलाश करने में कि आप अंदाजा नहीं कर सकते। सबसे पहले तो इस चीज को समझें कि मुरतबा लिखा है, मुरतबा को चेक अगर आपने लगाया और एक लफ्ज पहले खाने में लिखा, दूसरा लफ्ज दूसरे में, तीसरे में, चौथे में, तीन में, दो में या पांचों में कोई ना कोई अल्फाज आपने लिखे तलाश करने के लिए और ऊपर मुरतबा को क्लिक किया, तो इस बात का मतलब ये होगा कि जो इबारत मैंने टुकड़ों में लिखी है तमाम खानों में, मुझे इबारत एग्जैक्ट याद नहीं है, कोई वाकया है, कोई किस्सा है, कोई सीरत का वाकया है, कोई कुरान मजीद की आयात है जिनके मुख्तलिफ अल्फाज याद है लेकिन पूरी आयत याद नहीं है, तो आपने मुख्तलिफ वो चीजें लिखी है जी, मुख्तलिफ इबारतें, एक हदीस के मुख्तलिफ अल्फाज लिखे, तो मुरतबा का मतलब यह है कि आपने जब चार चीजें तलाश कर रहे हैं वो लाजिमन, मुरतबा का मतलब यह है कि जो मैंने सबसे पहले लिखी है तरतीब में एक ही सफ़े पर वो पहले होनी चाहिए, उसी सफ़े पर तरतीब में वो दूसरी होनी चाहिए और उसी सफ़े पर वो तीसरी और चौथी, जो जो जिस तरतीब से आपने खानों में डाला है उसी तरतीब से होना चाहिए, तो फिर मुरतबा अगर आपको मतलूब है तो क्लिक करें। लेकिन आपको याद नहीं है कि जिस हदीस, तवील हदीस को या किसी फिका की इबारत के मुख्तलिफ अल्फाज आप इन सारे खानों में डाल रहे हैं और आपके इल्म में है कि वो एक ही सफ़े पर, एक ही जगह पर जरूर हैं वो अल्फाज, तो वो आप मुरतबा को चेक ना लगाएं अगर आपको एग्जैक्ट याद नहीं है कि पहले कौन सा लफ्ज है उस पैराग्राफ में, दूसरा लफ्ज कौन सा है, तीसरा कौन सा, ठीक है जी। तो मुरतबा का मतलब ये समझ लें कि आप अगर अनचेक रखते हैं, एक मिसाल दे देता हूं मैं आपको, अभी ये बात समझ भी आ जाएगी प्रैक्टिस से, कि मुतूनुल हदीस में आप देखें हम एक पूरे मजमूए को क्लिक कर देते हैं जी, चेक लगा देते हैं, चेक लग गया है, अब मैं लिखता हूं मुस्लिमूना, ठीक है जी, यहां लिखता हूं सलीमा, अब मैं लिखता हूं जी लिसान, लिसानी ही, बल्कि लिसानी ही पूरा ही लिखता हूं। अब मिसाल के तौर पर एक रिवायत है अल मुस्लिमु मन सलीम अल मुस्लिमून मिन लिसानी ही व यदी ही, ठीक है जी। तो ये देखें, आपको अगर ये अल्फाज याद है, पूरी हदीस याद नहीं है, पूरी हदीस याद नहीं है, तो अब क्या है, तो मुस्लिमूना पहले आ गया इसमें और सलीमा बाद में है, ठीक है। अब मुरतबा पे अगर मैं क्लिक करूंगा, मुरतबा पे अब मैं तलाश कर रहा हूं जी मुतूनुल हदीस में ये रिवायत तलाश की जाए जहां ये अल्फाज आए हों, तो आप देखें क्या चीज आई है, यानी जिस तरह मैंने लिखा है वो मैंने सलीमा लिखा तो सल्लमा भी आ गया, अल मुस्लिमीन भी आ गया, असलमा भी आ गया, ठीक है। अब हम जरा दूसरे तरीके से देखते हैं, एक और रिवायत है, मिसाल के तौर पर मुझे एक रिवायत और एक किस्सा याद है और उसमें ये अल्फाज है, अंसार है मसलन, मशीखा भी है, बीदुन भी है सफेद, मूंछों का जिक्र है सिबालहुम, ठीक है जी, चार अल्फाज मुझे याद है, पूरा वाकया याद नहीं है। अब ये चार अल्फाज हैं, अब क्या होगा जी, मैं इसको क्लिक कर रहा हूं, नीचे देखें तजाहुल फुरूक भी है और मुअल्लिफीन की तारीख वफात की तरतीब से ही वो देगा क्योंकि चेक लगाया हुआ है ना मैंने। अब मैं इसको क्लिक कर रहा हूं, ये तलाश कर रहा है, मतून उल हदीस की 175 किताबों में से तलाश जारी है। अब मेरे जहन में एक किताब थी जिसमें ये रिवायत है, मेरे इल्म में भी है, वो किताब यहाँ रिजल्ट में सर्च होकर जा चुकी है, लेकिन शामिला ने उसमें से ये रिवायत उठाकर नहीं दी मुझे। मुस्नद अहमद की असल में ये रिवायत है, जो अल्फाज मुझे याद थे मैंने लिख लिए हैं, शामिला ने उसको मुस्नद अहमद से नहीं उठाया। नाम आते चले जा रहे हैं, जिस जिस किताब में से सर्च जारी है, नाम जब गायब हो गया इसका मतलब है मुस्तदरक हाकिम से देखी जा चुकी है। अब मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ जी, यहीं इसको बंद कर दिया है, दोबारा उसी जगह पर चला गया हूँ। अब मसला क्या है जी, ये देखें ऊपर मुरतबा है, ये मुरतबा पर मैंने चेक लगाया हुआ है, जब चेक लगाया हुआ है तो अल्फाज मेरे हू बहू उस तरह नहीं है, यानी मैंने कहीं से भी याद थे जो सिबा लहुम कहीं डाल दिया है, बीज कहीं लिखा है, अंसार कहीं और जगह पर लिख दिया है, और यहां देखें एक और भी मैं लफ्ज लिख देता हूं, उसी उसी का खालिफू भी है जी, खालिफू अहलल किताब, मैं ये भी ऐड कर लेता हूं। और अब मैं मुरतबा को अनचेक करता हूं, अनचेक कर दिया है, अब मैं सर्च करता हूं दोबारा मुतूनुल हदीस है, देखें आपके सामने पूरा फोल्डर चेक लगा हुआ है, दोबारा मैं क्लिक कर रहा हूं, मुरतबा को हटा दिया मैंने। अब आप देखें कि मुस्नद अहमद से ये रिवायत जो कि मेरे इल्म में है कि वहां होनी चाहिए, ये रिवायत तलाश की जा सकती है या नहीं। ये देखें आपके सामने आ गई है, ये मुस्नद अहमद पे पहुंचा है सॉफ्टवेयर, तो उसके दो नुस्खे, दो अलग अलग एडिशन इनके पास है, एक मुस्नद नहीं है, दो है, तो दोनों से निकाल कर दे दिया। और ये देखें वाक्य आ गया पूरा। अब बात क्या है कि हमने जब भी इसको लेना होता है, यानी मुरतबा का मतलब अब आपको समझ आ गया होगा कि अगर हमने मुतफर्रिक अल्फाज जो हमें याद ही नहीं है, पहला लफ्ज जो मैं लिख रहा हूं हो सकता है वो रिवायत के आखिर में हो, और जो मैं दरमियान में लिख रहा हूं वो बिल्कुल शुरू में हो, तो मुरतबा पर आमतौर पर अनचेक होना चाहिए, क्यों कि हम अलग अलग चीजें तलाश कर रहे हैं। ये बात वाजे हो गई होगी उम्मीद है कि इन सारे खानों का मतलब क्या हुआ। ये पांच खानों का मतलब ये हुआ कि कोई किस्सा, कोई फिक्रा, कोई पैराग्राफ किसी भी मौजू पर, किसी भी किताब में, जो रेंज आपने मुतय्यन कर दी कि मैं फला जगह पर तलाश कर रहा हूँ फिका की किताबों में और उसूल फिका की किताबों में, अरबी जबान में नहव का कोई मसला है वहां तलाश कर रहा हूं, तो आपके इल्म में कोई इबारत है उसके मुख्तलिफ अल्फाज हैं, पूरी इबारत याद नहीं है, तो वो मुख्तलिफ अल्फाज अलग अलग खानों में लिखेंगे, और मुरतबा याद नहीं है तो मुरतबा पर अनचेक्ड ही रहने दें। ये मैं बंद कर रहा हूं, ये आपके सामने देखे रिजल्ट आ चुका है। तो एक चीज ये वाजे हो गई जी कि इन खानों का क्या मतलब, और दूसरी ये वाजे हो गई कि मुरतबा का क्या मतलब। तो बेहतर क्या है कि जब हमें याद ही नहीं है जो कि जो कुछ अल्फाज हम लिख रहे हैं किसी भी किस्से के, जैसे इन्नमल आमालु बिन्नियात वाली रिवायत है, यह हदीस जिब्रील है, उसमें ईमान भी है, उसमें इस्लाम भी है, उसमें अलामात क्यामत भी है, वो सारी चीजें हैं, उसके चंद अल्फाज आपको याद है लेकिन ये इल्म में नहीं है कि पहला लफ्ज कौन सा है दूसरा कौन सा है, तो आप अलग अलग अल्फाज लिखें और मुरतबा को अनचेक रखें और फिर तलाश करें। ठीक है जी, ये सारी बात वाजे हो गई। अब जो चीज रह गई है वो एक ही है, ये देखें जब ये सारी चीजें लिखने के बाद ये तमाम खानों को अगर खाली करना है दोबारा, तो ये है, ठीक है जी, इसको अगर मैं क्लिक करता हूं तो जो कुछ मैंने अभी सर्च किया था मुझे अलग से यहां जाकर बार बार इसको बैक करके और डिलीट करने की जरूरत नहीं, बल्कि यहां से किया जा सकता है। ठीक है जी, इसको क्लिक करने से ये सारी की सारी तमाम खाने खाली हो जाएंगे। एक और चीज आप देखें कि अगर आपने जाकर किसी को किसी भी खाने में क्लिक किया है और देखें आपको ये ब्लू हाईलाइटेड दिखाई दे रहा है, अब अंसार का लफ्ज, तो यहां अगर आप माउस को स्क्रॉल करेंगे ना, स्क्रॉल, ये देखें जब हाईलाइटेड है, अगर आप स्क्रॉल करेंगे तो जितने अल्फाज आप पहले यहां तलाश कर चुके होंगे वो एक एक करके स्क्रॉल अप एंड डाउन माउस को करें तो देखें पीछे दूसरे अल्फाज भी आपके सामने आ जाएंगे। उन सबको बार बार तलाश करने की, लिखने की, टाइप करने की जरूरत नहीं है। यहाँ जाकर सेलेक्ट करें, आपकी हिस्ट्री में अगर पहले से बहुत से अल्फाज लिखे हुए हैं तो स्क्रॉल अप एंड डाउन करने पर ये अल्फाज आपके सामने आ जाएंगे। देखें मैं खाने अब खाली कर रहा हूँ, क्लिक किया है सब खाली हो गए। लेकिन आप देखें हिस्ट्री में बहुत कुछ होगा, अगर आपने दो दिन, चार दिन, दस दिन जो भी काम किया, चीजें सर्च की है, तो शामिला की हिस्ट्री में वो पड़ा रहेगा। इस वक्त खाने खाली कर दिए, अगर आप चाहते हैं कि हिस्ट्री भी रिमूव कर दी जाए तो फिर इस ब्रश को क्लिक करें। ठीक है, इस ब्रश को क्लिक करने के बाद देखें आपको कुछ दिखाई नहीं देगा, अब वो हिस्ट्री भी जो थी वो अब साफ हो गई। ठीक है, ये इन दोनों का ये मतलब है, जो कुछ लिखा हुआ है अगर उसको डिलीट करना है, सामने से नई चीज लिखनी है तो यहाँ डिलीट करें, और सारी हिस्ट्री जो है सर्चिंग की इन खानों में वो रिमूव करनी है तो यहाँ क्लिक करें। और ये तो तलाश का बटन है, ये आप पहले ही समझ चुके हैं, ये बात वाजे हो गई है। अच्छा जी, अब एक और चीज मैं आपको बताऊं कि ये जो मुताबिक है इसका क्या मतलब है, ये मीम जो लगा है ना मीम, अगर आपने कोई भी चीज यहां लिखी है, कोई भी चीज लिखी है, आपके इल्म में है कि हू बहू वही अल्फाज हैं, वही उस बिल्कुल दुरुस्त टाइप हुआ हुआ है, उसमें कोई भी चीज का फर्क नहीं है, तो फिर आप क्या करेंगे जी, उस सूरत में आप ये करेंगे कि अपनी बात लिखेंगे, मसलन यही मैं वो लिखता हूं जी, इन नमल आमाल बिन नियात, मैंने इन नमल आमाल लिखा। और देखें यहां सारी किताबों को पहले मैं डी सेलेक्ट कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा मुतूनुल हदीस में गया मैं और मैंने तलाश किया जी सहीहुल बुखारी, ये देखें सही बुखारी को चेक लगाया, सिर्फ एक किताब में गया, इसको चेक लगाया और तमाम किताबें अनचेक्ड हैं, और मैंने इन नमल आमाल लिखा है। ठीक है जी, अच्छा जी, अब अगर इन नमल आमाल मैंने इस तरह लिखा है कि मुझे हर चीज बिल्कुल याद है कि इसी तरह बुखारी में है, ठीक है, जिस तरह मैंने लिखा है, तो मैं मुताबिक दबा सकता हूं, यानी चेक लगा सकता हूं, और आपको मुताबिक ही चाहिए बिल्कुल जो हू बहू आपने लिखा है, कुछ भी फर्क ना हो, तो फिर आप देखिए सर्च करें मुताबिक चेक लगा कर, तो हू बहू वही चीज होगी तो आ जाएगी। ये देखें सही बुखारी में इन नमल आमालु बिन नियात ये रिवायत आ गई है, इसका ये सफा नंबर, जिल्द नंबर, रिवायत नंबर एक, ये सब कुछ आ गया है, दो किताब ये दो जगहों पर आ गई है, यानी मुकदमे में भी है और सही बुखारी असल किताब में पहली रिवायत है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो कुछ मैंने टाइप किया था हू बहू उसके मुताबिक इबारत मौजूद थी तो उसने तलाश करके दे दी है हू बहू। ठीक है जी, अब मैं इसको बंद कर रहा हूं। अब सीखना क्या है जी कि मुताबिक हटाने का क्या मतलब हुआ, मुताबिक हटाने का मतलब ये कि मैंने इसको हटा दिया है जी, और इन नमा का अलिफ भी बगैर हमजा के सिर्फ अलिफ लिखा है, और अल आमाल जो है ना अल आमाल उसका भी अलिफ मैंने हटा के सादा अलिफ कर दिया है बगैर हमजा के, और यहां तजाहल फरूक भी हटा दिया है। ठीक है, हमजा अलिफ या ताए मरबूता की इग्नोर कर दें, चेक भी हटा दिया है। ठीक है, सही बुखारी उसी तरह चेक है। अब मैं फिर तलाश कर रहा हूं जी, और मैंने यहां मुताबिक लिखा है जी, मुताबिक चेक लगाया है कि जो कुछ मैंने टाइप किया है इसके मुताबिक तलाश करें। अब देखिए सही बुखारी में दिखाता है रिजल्ट क्या दिया है कि ला तूजद नताइज, यानी जो कुछ आप तलाश कर रहे हैं वो सही बुखारी में नहीं है। अब आप देखें जी यहां आपने इन नमल आमाल बिन नियात तो लिखा हुआ, क्यों नहीं है, मैंने इन नमा इस तरह अलिफ लिखा है कि बगैर हमजा के, आमाल में भी वो अलिफ है जिसपे हमजा नहीं है ऊपर। ठीक है जी, तो हू बहू जो अरबियत की जो इमला है उसके मुताबिक भी नहीं है, और जिस तरह बुखारी में छपा हुआ लिखा हुआ है उस तरह भी नहीं है, और चेक क्या लगाया मैंने मुताबिक, बिल्कुल हू बहू होना चाहिए, और यहां भी मैंने कहा था कि हमजा वगैरह को आप जो है ना वो इसको इग्नोर ना करें, जैसे लिखा हुआ है उसी तरह जाने दें, उसको इग्नोर ना करें। अब देखें तजाहलिल हुरूफ को मैं, तजाहलिल फुरूक को मैं चेक लगा रहा हूं। अब फिर तलाश करके देखते हैं, अब आ जाएगा, क्यों कि मैंने उसको चेक लगाया है कि मैंने अलिफ वगैरह की अगर कोई बात है ना, इतनी ही गलती है तो उसको इग्नोर कर लेना, यानी अलिफ पे हमजा वगैरह नहीं है, या के नीचे दो नुक्ते मैंने नहीं लिखे तो इसको इग्नोर कर दें। तो अब देखें आप तलाश कर दिया, अब मेरे ख्याल है कि कोई चीज इस पूरे बॉक्स में सिवाय इस दूसरे टैब के औ के और कोई भी चीज बाकी नहीं रह गई, सब आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह आ चुका है। अब आखिरी औ को देख लेते हैं। औ में अगर आप जाए तो मुरतबा का ऑप्शन नहीं है, औ में भी ये सारे खाने हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं है। यानी जो अभी वाओ में पढ़ा है इसका मतलब ये है कि मैंने पहले दूसरे तीसरी चौथी सतर में जो कुछ भी लिखा है, ये भी ये भी ये भी ये भी, ये सारी चीजें एक ही जगह पर मुझे तलाश करके दे दें एक ही सफे पर। और ये क्या है, औ या पहली चीज, सेकंड औ या दूसरी इबारत या तीसरी इबारत या चौथे खाने में लिखी हुई, एक ही सफे में इन पांच में से जो भी इबारत हो वो मुझे तलाश करके दे दें। औ का ये मतलब है, यानी वो सारी चीजें नहीं होंगी, एक होगी या दो होंगी, जो भी तलाश करके एक भी होगी पांच में से तो आपको वो सर्च करके शामिला दे देगा। ये औ और वाओ का ये फर्क है। और ये मुताबिक, और ये इस चीज में वैसे ही वाजे कर चुका हूं कि अगर आपने हू बहू चीज सही लिखी है और पूरे एतमाद से लाजिमन वही तलाश करना चाहते हैं तो ठीक है, वरना मेरी जो रिकमेंडेशन है वो ये है कि मुरतबा पर हमेशा अनचेक रहना चाहिए, और ये जो कुछ है ना मुताबिक, इसको भी हमेशा अनचेक रहना चाहिए, ये याद रखिएगा। और ये तजाहल फुरूक पर हमेशा चेक लगा रहना चाहिए, इससे ये होगा कि आपकी टाइपिंग में किसी लिहाज से कोई अलिफ की या की ताए मरबूता की कोई गलती हुई तो वो उसको इग्नोर करेगा और आपकी चीज तलाश हो जाएगी। ठीक है, मुरतबा को अनचेक रखें और ये मुताबिक को भी अनचेक रखें, उसके साथ एक या दो या चार पांच खानों में आप चीजें तलाश करें और इसको तजाहल फुरूक को भी चेक लगा कर रखें, इसमें आपको चीजें फिर बआसानी मिल जाएंगी। अब हम देखेंगे जनाब, ये सारे आइकन्स हो चुके हैं। देखिए आज का पहला क्या बताया था मैंने कि यहां आपने कोई इबारत या कोई लफ्ज लिखकर जब इस पर क्लिक करेंगे तो जो किताब का सफा खुला है उसमें तलाश करेगा। अगर आपने कोई किताब खोल रखी है, कोई भी किताब, तो फिर ये आप इस पर क्लिक करेंगे उस किताब के अंदर आप तलाश कर सकते हैं। अल बहस फिल किताब अल हाली, इसी किताब पर रहते हुए कुरान मजीद में भी तलाश कर सकते हैं, इसी किताब में रहते हुए बयानातुल कुतुब वल मुअल्लिफीन की मालूमात में इसमें भी आप जाकर तलाश कर सकते हैं। और ये देखें इसमें भी वही खाना है। अब आपको बिल्कुल वाज़े तौर पर समझ आ गया होगा कि इसमें भी मुरतबा का क्या मतलब है, इसमें औ का और वाओ का क्या मतलब है, ये पांच खानों से क्या मुराद है, और हर एक पर चेक लगाने और अनचेक करने से क्या फर्क पड़ेगा। जो कुछ हमने यहाँ लिखा है, जो कुछ भी लिखा है उसको डिलीट करने का यही तरीका है। देखें यहां भी इसको डिलीट कर दिया जाएगा, और पहले से हिस्ट्री में जो कुछ मौजूद है ये देखें, पहले से हिस्ट्री में सारी कुछ चीजें मौजूद है, इस सब को साफ करने के लिए ये इरेजर का बटन है, इस पर क्लिक करें, ये देखें सारी हिस्ट्री साफ हो चुकी है। ठीक है जी, और ये तलाश का बटन है, इसी वक्त सर्चिंग जारी है ना तो उसको रोकने के लिए स्टॉप का ये बटन है, लेकिन ये आमतौर पर काम में नहीं आता। तो ये दो चीजें शुरू में हमने सीखी थी, तीसरी ये बहस का पूरा जो सबसे अहम तरीन मकतबा शामिला का फीचर है, ये आज हमने पूरा समझने की कोशिश की है प्रैक्टिस के साथ, मिसालों के साथ, वो भी वाजे हो गया। और आखिरी रिजल्ट जब भी आके शामिला खोलना है, आखिरी रिजल्ट यहां से खुलेगा, आप एक क्लिक करेंगे, जो चीज सबसे आखिर में आपने तलाश की थी, मसलन सही बुखारी में अभी की है, वो आपके सामने आ गई है। कोई कोई चीजें आपने तलाश करके सेव कर दी थी नाम से, जैसे मैंने ये किया मसअला फिल उधिया, ये मैंने एक तलाश किया है, एक सर्च किया है इसी नाम से, उस सर्च को महफूज कर दिया। अगर मैं अभी डबल क्लिक करूंगा तो मुझे अलग से उस तमाम रेंज में तलाश करने की जरूरत नहीं होगी, बल्कि शामिला उस पूरी सर्चिंग को, उसके रिजल्ट को तलाश करके इस वक्त मेरे सामने बआसानी ला सकता है। इसी तरह इस वक्त जैसे मन हमल अलैन सिलाह फलैस मिन्ना किया था, तो वो भी यहाँ मौजूद है, क्योंकि बहुत बड़ी सर्च है, इस वजह से इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। जरा सा दूसरी हम मिसाल देख लेते हैं, ये वाली, ये अभी हमने की थी, इसको डबल क्लिक करूंगा, चूंकि छोटा सर्च है तो ये देखे फौरी आपके सामने खुल रहा है। ठीक है, ये हो गई है, अब हम जा रहे हैं, ये चीजें हम पहले सीख चुके हैं। कोई भी किताब खोली है, नेक्स्ट पेज पे ऐसे जाना है, पिछले पेज पे इस एरो से जाना है, बिगिनिंग ऑफ द बुक पे ऐसे जाना है और एंड ऑफ द बुक पर इस एरो से जाना है। ठीक है जी, चाहे वो 25 जिल्दों की किताब है या 40 जिल्दों की किताब है, जैसे इसको क्लिक करेंगे आखिरी जिल्द के आखिरी सफे पर आप पहुंच जाएंगे। ये हो गया खत्म। अब हम जा रहे हैं जी कुरान मजीद के हवाले से, तफसीरों के हवाले से सीखना है कि अगर हमने कुरान मजीद में कोई काम करना है तो मकतबा शामिला हमें तकाबुली तफसीर का जो मुताला है उसमें क्या सहूलत देता है। तो इस पर अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो इसमें एक आध फंक्शन चूंकि मौजूद नहीं है इस वर्जन में, मैं आपके सामने एक दूसरा शामिला शेयर करूँगा और उसमें उससे सिखाऊंगा, वो भी यही चीज है। आप मुझे बताइएगा अगर वो खुल गया है, स्क्रीन शेयर हो चुकी है, ये देखें दूसरा शामिला आपके सामने है, आप लोग बता सकते हैं ताकि मैं सुनूं और आगे चलूं। दूसरा
बिल्कुल
शामिला आपके सामने आ गया है, वर्जन आ गया है।
जी,
ठीक है, अब आप देखें वही, ये सारे एक ही चीज है जो अभी हम सीख चुके हैं, सब एक ही चीज है। यहां हम पहुंचे हैं जी, और जैसे ही वहां हम कर्सर लेकर जाते हैं, एरो लेकर जाते हैं, अल कुरानुल करीम व तफसीरुहू, जैसे मैं क्लिक करूंगा इस पर आप देखें क्या खुलता है। इसको मैंने क्लिक किया है, एक कॉलम राइट पर है जिसमें 114 सूरतें हैं जी। ठीक है, ये आप देख लें दाएं तरफ। अच्छा, दूसरा है जो भी सूरत आप सेलेक्ट करेंगे दूसरे कॉलम में उसकी आयात जितनी भी है वो आपको दिखाई देंगी। सूरह फातिहा की आयात इस वक्त सामने है क्योंकि सूरह फातिहा सेलेक्टेड है। आप सूरह आल इमरान पर क्लिक करें तो ये सूरह आल इमरान की सेकेंड कॉलम में आयात आ जाएंगी। आप सूरह सबा पर क्लिक करें तो दूसरे कॉलम में ये आ जाएंगे। ठीक है जी, ये आपके सामने पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम। अब ये तीसरी चीज यहाँ है, कुरान मजीद की का टेक्स्ट है ये। सूरह अनकबूत पे क्लिक करता हूं, आयत नंबर मिसाल के तौर पर 22 पर चला जाता हूं, फौरी यहां आयत खुल जाती है। मैं सूरह स्वाद पर जा रहा हूं, आयत नंबर 30 पे क्लिक करता हूं, सूरह स्वाद की आयत नंबर 30 मेरे सामने है। ठीक है जी, इसी तरह सूरह सफ पे चला गया, आयत नंबर 12 पे क्लिक किया, आयत नंबर 12 मेरे सामने सूरह सफ की ये मौजूद है। ठीक है जी, पहला कॉलम नाम है सारी सूरतों के, दूसरा आयतों के नंबर हैं, और तीसरा आपके सामने जो मेन स्क्रीन है वो कुरान मजीद का टेक्स्ट है। अब आप कहते हैं जी सूरह मिसाल के तौर पर सूरह हुजुरात है, सूरह हुजुरात पे आपने क्लिक किया और आयत नंबर 13 पे क्लिक कर दिया, आपके सामने ये आयत आ गई है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न। किताब खोल ली आप, कुरान मजीद का टेक्स्ट खोल लिया है, सूरत आपके सामने है और जो मतलूबा आयत है नंबर 13 वो भी यहाँ है जी। ठीक है, तो अब ये जो पैसेज या ये पैराग्राफ आपके सामने आया है या ये आयत सामने आई है, तो अब आप चाहते हैं कि किस 1, 2, 3, 4, 5 या 80 तफसीरों में वन बाय वन में जाकर इसी आयत पर देखना चाहता हूं कि जो भी तफसीरें अवेलेबल है यहाँ, ये जो असल में हमने पूरा फंक्शन खोला है अल कुरानुल करीम से, ये तफसीरों का तकाबुली मुताले का असल में ये सहूलत है। तो आप देखें ऊपर आपको ये एक दिखाई दे रहा है, ये एक बॉक्स, इसको आप देखेंगे तो ये इसमें बेशुमार तफसीरों के नाम है। ये देखें जिस पे जादुल मसीर पे क्लिक किया तो इब्ने जौजी की जादुल मसीर में यही आयत, या अय्युहन्नास इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, आयत नंबर 13 सूरह हुजरात जादुल मसीर में खुल गई है। इमाम राजी की तफसीर कबीर है मफातीहुल गैब, मैंने बराबर में उस पर क्लिक किया तो ये खुल गया है। तफसीर बगवी पे मैंने क्लिक किया तो यही आयत वहां खुल गई है। ठीक है, ये तफसीर उल खाजिन में क्लिक किया तो यही आयत वहां खुल गई है। ऊपर बैजावी में गया तो वहां चूंकि मौजूद अगर है तो खुल जाएगी। अगर बाज ऐसी भी तफासीर हैं कि जो 15 अज्जा हैं या कुछ सूरतें हैं तो उसमें आपको वो मवाद नहीं मिलेगा, जैसे कि मिसाल के तौर पर अल्लामा रशीद रजा की तफसीर अल मनार है, تو مکمل نہیں ہوئی، تو جتنے اجزاء ہیں وہ آخری والا حصہ آپ کو قرآن کا وہاں نہیں ملے گا. تفسیر قرطبی کو کلک کروں گا تو یہ دیکھیں وہاں چلا گیا. یہ ہے جی ایک اہم ترین فیچر کہ آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت کو، ایک مقام کو فوکس کر کے جب اس کو کھول لیا ہے سیکنڈ میں، لمحوں میں آپ دیکھیں نا کہ یہیں سے آپ سورہ غافر میں چلے گئے اور کہا جی غافر کی آیت نمبر 14 کھول لیں. یہ دیکھ 14 آ گئی ہے. اب آپ کہتے ہیں اس کو، اس آیت کو ذرا تفسیر ابن عباس میں دیکھیں، کلک کر دیا ہے آپ یہاں آ گئے. ٹھیک ہے جی، تفسیر القطان میں دیکھیں اگر وہاں ہے تو آ جائے گا. تفسیر یہ سید تنتاوی کی تفسیر میں دیکھ لیں، یہاں آ گئے. تفسیر آیات الاحکام ہے اس میں دیکھ لیں. اچھا اب ایک اور مسئلہ ہے جی، یہ غالباً 88 تفاسیر ہیں. آپ کو یہ مشکل ہو رہی ہے کہ مجھے تو یہ آیت اصل میں زمخشری کی کشاف میں دیکھنی ہے یا ابن کثیر میں دیکھنی ہے، اب یہ اوپر سے نیچے تک میں تلاش کیسے کرتا رہوں، اس میں تو کافی وقت لگ جائے گا کہ وہ زمخشری کی کشاف کہاں ہے. اب آپ دیکھیں کہ آیت تو یہاں ہے نا موجود، آپ نے مثلا سورہ زاریات ہے اس کی آیت نمبر 12 پہ کلک کیا ہے، سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 10 ہے مثال کے طور پر، اس کو آپ نے کلک کر دیا ہے. تو اب آپ ابن کثیر کھولنا چاہ رہے ہیں، ابن کثیر میں چلے جائیں ڈائریکٹ، آپ اسکرول ڈاؤن کر کے نیچے جانا یہ بہت وقت لے گا، آپ اس خانے میں آ جائیں. یہ وہ فیچر یہ جو فیچر تھا جو میرے اس ورژن میں نہیں تھا، جس کی وجہ سے میں نے یہ شاملہ کھولا ہے آپ کے لیے، کہ آپ دیکھیں گے ابن کثیر میں نے یہاں لکھا تو آٹومیٹیکلی ابن کثیر کی یہاں ایک سے زیادہ اگر وہ ہے نا کہ دیکھیں چھاپے ہیں، وہ سب کے سب ہیں، ان میں سے جس پہ آپ کلک کریں گے یہ دیکھیں وہاں کھل گئی ہے، یہ اب تفسیر ابن کثیر کھل گئی ہے. آپ کہتے ہیں جی الکشاف میں لے جائیں مجھے اسی آیت کو، وہاں دیکھنا ہے زمخشری نے کیا لکھا ہے اس پر. دیکھیں کشاف میں ہم پہنچ چکے ہیں، آٹومیٹیکلی جو ہے یہ وہاں چلا جاتا ہے. یہ دیکھیں آپ کے سامنے کشاف سلیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے، اب آپ کہتے ہیں دیکھیں احکام القرآن میں، جساس کی احکام القرآن میں یہ ہے. یہ دیکھیں جساس کی احکام القرآن آپ کے سامنے آ گئی ہے اور یہاں سلیکٹڈ بھی ہے، تو اگر یہ وہاں ہے تو ضرور یہاں کھل جائے گا. تفسیر ابن ابی حاتم پہ کلک کیا تو وہاں چلا گیا ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ پہلے کالم میں قرآن مجید کی 114 سورتیں ہیں، سورت کو کلک کریں، جو آیت آپ کو مطلوب ہے اس آیت پر کلک کریں، کلک کرنے کے بعد جو تفسیر بھی آپ نے کھولنی ہے اوپر سے چلے جائیں. اگر آپ کے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ آپ اس کو تلاش کریں اور پورا اسکرول ڈاؤن کر کے 88 تفاسیر کو دیکھیں کہ میری مطلوبہ تفسیر کہاں ہے، تو یہاں اس رائٹ اس باکس میں آ کر لکھیں. جیسے لکھیں گے نا تو اس کے بعد نیچے 1, 2, 3 ایڈیشن جتنے بھی ہیں وہ سب کے سب وہاں دکھائی دیں گے اور وہ آپ سے آپ وہاں سلیکٹ ہو جائے گا. آپ کی وہ آیت جو آپ کا قرآنی ٹیکسٹ ہے جس میں آپ تفسیر کا تقابلی مطالعہ کر رہے ہیں وہ فوراً اس تفسیر میں آپ شفٹ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے جی، یہ بات واضح ہے. اچھا اب ایک اور چیز آپ ذہن میں رکھیں بطاقت الکتاب کی، کہ جب بھی ہم کسی بھی تفسیر کو یہاں کلک کر رہے ہیں اور اس تفسیر میں چیزیں کھل رہی ہیں تو نیچے وہی آپشن ہے دیکھیں کہ آپ اعراب اور تشکیل کو چھپا سکتے ہیں. یہ دیکھیں جیسے ہی کلک کروں گا بغیر زیر زبر کے ساری عبارت آیت ہیں، واپس لے آئیں تو واپس آ جائیں. ٹھیک ہے، اور یہ بھی ہے کہ آپ جب تفسیر کا مطالعہ کر رہے ہیں آپ نے التفسیر الواضح پہ کلک کیا ہے اور اوپر آیات ہے نیچے تفسیر ہے، آپ کہتے ہیں آیات کو چھپا دیں، آیات کی اس وقت ضرورت نہیں ہے. جہاں سے آپ سرچ کر کے آئے تھے آپ نے اخفاء الآیات پہ کلک کیا تو بس صرف تفسیر آپ کے سامنے. ٹھیک ہے، اچھا جی اب آپ دیکھیں جو نیچے یہ آئیکن ہے جو شروع سے میں آپ کو بتا رہا ہوں فل ویو کے لیے، یہ جو التفسیر الواضح جس میں ابھی یہاں اس مطلب اپلیکیشن کے اس حصے میں چونکہ التفسیر الواضح کھلی ہے نا جہاں ہم تفسیروں کا تقابلی مطالعہ کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یہ کتاب فل ویو میں عرض کامل میں دکھائیں مجھے. تو یہ دیکھیں یہ نیچے وہی لیفٹ پر آپ کارنر پر دیکھیں اس کو جیسے ہی کلک کریں گے التفسیر الواضح اب اپنی فل ویو میں کھل جائے گی. وہاں پھر وہی بات ہے, آپ اپنے شجرۃ الکتاب کھول لیں چاہے بند کر دیں. کوئی تعلیق لکھنی ہے تو یہاں نیچے نوٹ لکھیں, سیو کر لیں. نہیں لکھنی, تعلیق کا بند کر دیں. اسی میں التفسیر الواضح میں اس صفحے پر کوئی چیز تلاش کرنی ہے, اس بار پر لکھ کر تلاش کر لیں. اس تفسیر الواضح میں کوئی چیز تلاش کرنی ہے, اس پر کلک کریں. یہ دیکھیں آپ کے سامنے وہی باکس آ گیا ہے, لکھیں اور اس التفسیر الواضح الکتاب الحالی میں جو تلاش کرنا ہے تلاش کر. ٹھیک ہے جی, اب اس کو اس کتاب کو یہاں سے جیسے ہی بند کروں گا واپس وہیں چلا جاؤں گا مقارنۃ التفاسیر والی ونڈو پر, جہاں سے تھے جہاں سے ہم آئے تھے وہیں چلے گئے. اور اس کتاب کا جو کہ کھلی ہے, اس کا بطاقہ یہاں ہے. بطاقۃ الکتاب مین اسکرین پر جو اوپر آئیکون ہے ہمیشہ آپ کو یہاں دکھائی دے گا. اب التفسیر الواضح پر یہاں کلک کریں گے, بطاقۃ الکتاب کھل گیا ہے. کتاب کے بارے میں کوئی معلومات ہوتی تو آ جاتی, مؤلف کے بارے میں بھی ہوتی تو یہاں آ جاتی. جیسے تفسیر آیات الاحکام ہے, اس پہ کلک کیا ہے. اس کا بطاقۃ الکتاب کھولوں گا تو یہ کتاب کی ایڈیشن بھی آ گیا ہے, کتاب کے بارے میں معلومات, مؤلف کے بارے میں معلومات. تو ان تمام تفاسیر کے اندر بھی آپ اسی طرح ہر کتاب کا بطاقہ کھول سکتے ہیں. اور یہاں سے چیزیں تلاش کرتے کرتے کسی بھی تفسیر کو, یہ دیکھیں آیات الاحکام سائز کی, شیخ سائز کی ہے, اس کا بھی عرض کامل یہاں آ کر آپ دبائیں تو فل ویو میں کتاب کھل جائے گی. اس کا شجرہ بند کر کے پڑھیں, کھول کر پڑھیں, جو بھی کریں. ٹھیک ہے جی, یہ بات بھی واضح ہو گئی ہے. تو قرآن مجید کا جو مطالعہ ہے یہاں تک ہم پہنچے ہیں, یعنی قرآن مجید کے حوالے سے یہ ہم نے سیکھا ہے اس آئیکن سے, القرآن الکریم و تفسیرہ, کہ اس کے اندر جا کر ہم قرآن مجید کی کسی بھی آیت تک اور ٹیکسٹ تک رسائی بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اس کو ملٹیپل تفاسیر کے اندر بیک وقت سوئچ کر کر براہ راست دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی, یہاں ہم روکتے ہیں. کل انشاءاللہ ہم حدیث کے حوالے سے دیکھیں گے کہ حدیث کا مطالعہ, حدیث کے ساتھ شرح کو کھول لینا, حدیث کی تخریج کر لینا, اس کے راویوں کے بارے میں تحقیق کر لینا, وہ ساری کی ساری چیزیں کیسی ہوتی ہیں, وہ انشاءاللہ یہاں اگلے آئیکن سے ہم کل سمجھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.